सेना हमारी जो सीरीज है जो है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, वो जो है मतलब पहले हमने ये मतलब शुरू किया था अफलातून से, उसके बाद फिर आगे जो सिलसिला जो है चल रहा था। वैसे पहले के हम ये मतलब आगे चले कुछ एक दो चीजें जो मतलब ये हवाला किया मतलब, एक तो ये कि मतलब जो है मतलब यूनानी फलसफा जो है मतलब उसके असरात जो है न सिर्फ ये कि मतलब ईसाइयत पर और यहूदियत पर नजर आते हैं, मतलब उनका जो मतलब इल्म कलाम है और इस्लाम में मुसलमानों के जो फलसफा है उसमें भी, बल्कि मगरबी फलसफा जो है उस पर भी उसके बड़े बुनियादी असरात हैं जो मतलब। तो इसमें आखिर क्या वजह है कि मतलब यूनानी फलसफा जो है मतलब वो हर मतलब फिक्र को मुतासर करने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं, इसकी वजह क्या उस फलसफे की ताकत है या उसके सामने जो अधियान खड़े हुए उनकी कोई कमजोरी?
देखें ये हमने पहले भी डिस्कस करने की कोशिश की है, इसको आम तौर पर लोग हिस्टोरिकली जिस तरह से देखते हैं वो हिस्टोरिकल प्रोसेस को इस फ्रेमवर्क में देखते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो जाहिर है कि 1 पॉइंट जो है वो पहले है 2 से और 2 3 से और 3 4 से और 5 इस तरह से। और जाहिर है कि अगर फर्क यह कि इस्लामिक थॉट की जब बात की जाएगी तो जाहिर है कि वो इस लीनियर मूवमेंट में फर्क किया पांचवें नंबर पर तहजीबी सतह के ऊपर, तो आप कहेंगे कि भाई इसके अंदर जो मबाहिस आ रहे हैं ये तो पहले बुनियादी तौर पर डिस्कस हो गए ग्रीक थॉट के अंदर या इससे पहले जो है क्रिश्चियन थॉट के अंदर किसी न किसी सतह पर या जुदाइक थॉट के अंदर। तो इसका मतलब है किसी तौर पर इन्फीरियर है ये तहजीबी और फलसफियाना सोच। क्यों? क्योंकि इस सवाल को जिसको बाद में मुसलमान फिलोसोफर या इंटेलेक्चुअल या मुसलमान जो है वो तहजीबी सतह पर डील कर रहे थे उसको तो बहुत अर्सा पहले जो है वो। तो देखें पहले तो ये कि जो हमने कोशिश की थी फ्रेमवर्क की वो ये कि बुनियादी सवालात होते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, उसका मेटाफिजिकल एक प्लेन होता है और एक उसका एपिस्टेमोलॉजिकल प्लेन होता है, लॉजिकल प्लेन होता है, उसका एथिकल या मॉरल प्लेन होता है और चौथा जो उसका दायरा है वो एस्थेटिकल प्लेन होता है, यानी कि उसकी एक मावादुत तबियाती सतह है सवाल की, एक उसकी इल्मी सतह है, एक उसकी अखलाकी सतह और एक उसकी जमालियाती सतह है। जाहिर है कि ये सवालात तो तमाम इंसानों के सवालात हैं। अब सवाल ये है कि तमाम इंसानों ने इन सवालात को जिस सतह पर एड्रेस किया उसमें जो तरतीब रही नॉन डॉक्यूमेंटेड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री की, उसमें ग्रीक्स पहले, ये तो एक हिस्टोरिकल चीज है, यानी कि ग्रीक से पहले की जो तहजीबें थी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट होंगी ना कुछ जो महफूज नहीं हो सकी प्री हिस्टोरिक पीरियड की। या तो आप ये कह लें कि भाई इंसान जो थे वो बिल्कुल जानवर थे, बंदर थे और बंदर होते 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 किसी तहजीबी दौर के अंदर वो इंसान बन गए और फिर वो इंसान बन के इस तरह से बन गए। रोमन्स थे तो पर्शियन भी बड़ी जबरदस्त सिविलाइजेशन थी, लेकिन उसका जो फिलोसॉफिकल पोजीशन थी वो नहीं महफूज हो सकी जिस तरह से एरिस्टोटल और प्लेटो की महफूज हो गई, उनकी महफूज नहीं हो सकी। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इन्फीरियर थे, उनको कुछ पता वता नहीं था। यानी कि आप देखें कि रोमन्स उस तरह से पर्शियंस के अंदर घुस के उनको नहीं मार सके जिस तरह पर्शियंस ने उनको घुस के अंदर मारा है, स्पार्टा तक घुस के अंदर मारा है उन्होंने। यानी कि पर्शियन इतनी स्ट्रांग सिविलाइजेशन थी, इतनी मजबूत सिविलाइजेशन थी कि वो उसने कई बार जो है रोमन्स को बिल्कुल पीछे धकेल दिया और पूरा इलाके पर कब्जा कर लिया, उनको अंदर घुस के बादशाह को मार के चले गए। तो लेकिन जब हम आप इंटेलेक्चुअल पोजिशन देखते हैं कि भाई पर्शियन की मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी और यूनिवर्सल मेटाफिजिक्स की یا یونیورسل اپسٹمالوجی کی یا یونیورسل مارل تھیوری کی یا یونیورسل ایسٹھیٹکس کی گروتھ میں ان کی کانٹریبیوشن کیا ہے. تو چونکہ وہ انٹلیکچولی محفوظ نہیں ہو سکی یا بیکاز آف سو مینی ریزن وہ ہمارے تک نہیں پہنچی. السلام علیکم مصطفیٰ صاحب, بات کریں گے مصطفیٰ صاحب, بات کریں گے جی سمجھے. ان سے کہیے میں اس وقت میٹنگ میں ہوں, میں مجھے ہے نا 4 بجے تک وہ فون کر لیں. ٹھیک ہے اوکے. تو وہ پہلی بات تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو انٹلیکچوئل ہسٹوریکل ڈاکیومنٹیشن ہوئی پری سوکریٹک فلاسفی کی, پوسٹ سوکریٹک فلاسفی کی, اور اس کے بعد اسکولاسٹکس کی, اور اس کے بعد پوسٹ اسکولاسٹکس, اور اس کے بعد پھر ماڈرنسٹ اور پوسٹ ماڈرنسٹ, ہم اس ترتیب کو ہی تہذیب کی ترتیب سمجھتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس بات کے علاوہ کہ آپ کے پاس جو ہسٹوریکل ریکارڈ محفوظ ہوا وہ اس ڈائریکشن میں ہو گیا, کسی اور ڈائریکشن میں ہی محفوظ ہو سکتا تھا. تو اگر جو بنیادی مابعد الطبیعیاتی سوالات ہیں وہ تو ہر تہذیب کے انسانوں کو کے سامنے چیلنج کے طور پر رہے ہوں گے, اور ہر تہذیب میں ان کو کسی نہ کسی سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موہیکنز ہیں ان کے پاس کوئی انٹلیکچوئل فریم ورک ہی نہیں تھا, بالکل جاہل تھے وہ سب. ان کی جو مائتھولوجیز ہیں اتنی وزڈم ہے اس کے اندر, اتنی وزڈم ہے کہ اگر آپ اسے سنیں تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ کی بہت سارے یعنی کہ اس کے اندر جو وہ ان کی جو سب سے مشہور ایک بہت ٹیل ہے جو کہ وہ موہیکنز ایک دوسرے کو سناتے تھے, وہ یہ کہ انسان کی جو سیلف ہے, ہیومن سیلف کا جو کنسیپشن ہے ان کے پاس, وہ کہتا ہے ہنگری سیلف, اور اس ہنگر کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے, ڈیزائر ہے. کہ انسان کی جو ہنگر ہے وہ ڈیزائر کی ہنگر ہے, روٹی کی ہنگر نہیں ہے, وہ پیٹ بھرنے کی ہنگر نہیں ہے, اٹس دی ہنگر آف دا ڈیزائر, اینڈ دی ہنگر آف ڈیزائر کین نیور بی سیٹسفائڈ. تو وہ اس کی بڑی مشہور ایک کہانی ہے جو موہیکنز ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ بھائی وہ ایک انسان تھا وہ جنگل میں بیٹھا رو رہا تھا, تو وہ سارے جانور جمع ہو گئے, انہوں نے کہا بھائی تم کیوں رو رہے, کیوں رو رہے؟ تو اس نے کہا مجھے جو ہے نا نظر صحیح نہیں آتا ہے, اور جو ہے نا میں اڑ نہیں سکتا ہوں, اور نہیں میں بھاگ سکتا ہوں, میں اتنا طاقتور بھی نہیں ہوں. تو سارے جانوروں نے کہا کہ سب سے پہلے اس نے جو وہ گب تھا واچر, اس نے کہا کہ بھائی تم میری سائٹ جو ہے نا, سائٹ اس کی بڑی زبردست, اس نے کہا میری سائٹ میں تمہیں دیتا ہوں, میری سائٹ تم لے. اور جو شیر جو تھا اس نے کہا بھائی میری طاقت تم لے. اور جو ہے اس نے کسی نے کچھ کسی نے سب جانوروں نے جو اپنی بہترین خصوصیات تھیں وہ دے. الو نے اس کو کوئی خصوصیت نہیں, الو بیٹھا رہا. اور جب وہ خوشی وہ چلا گیا تو سب جانور نے کہا کہ بھائی اب تو یہ انسان بہت خوش رہے گا, اب تو ہم نے سب اس کو دے دیا, گفٹ کر دیا سب, اب تو خوش رہے گا. تو اس نے کہا, الو نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے اس کے ایک سیلف کے اندر ایک ہول دیکھا ہے, اس کے سیلف میں ایک گڑھا میں نے دیکھا ہے, اور وہ گڑھا جو ہے اس کے منہ کے گڑھے سے زیادہ خطرناک ہے, اور وہ ہے ڈیزائر کا گڑھا, اور یہ کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا, اور ایک دن جنگل اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کو, مجھے معاف کرو, لیکن یہ پھر بھی روتے رہے. اب آ گئے کہ یہ اس میں کوئی میٹافزکس نہیں ہے, اس کی کوئی موریلٹی نہیں ہے, اس کی کوئی ایسٹھیٹکس نہیں ہے, اس کی نہیں محفوظ ہوئی, لوگوں کو نہیں پتا چلا, وہ اتنا ہائی کلچر نہیں ہو سکا, وہ اتنا ڈومینیٹ نہیں کر سکے, وہ اپنے میٹل کو اس طرح افیکٹولی انہوں نے استعمال نہیں کیا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ زندگی کے معنی نہیں تھے ان کے پاس, اس تہذیب کے پاس, یا کوئی علمیت موجود نہیں تھی, یا کوئی اخلاقیات ان کے پاس نہیں تھی. اور یہ ایسٹھیٹکس پہلی بات رہی ہے. دوسری بات یہ کہ سعید شیخ کا ایک پورا تھیسس ہے اسلامک تھاٹ کے اوپر, ان کا پی ایچ ڈی تھیسس ہے, اس میں بہت 2-3 شروع کے پیجز کے اندر انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. صوفیزم کے اوریجن کے اوپر انہوں نے بات کی, بنیادی طور پر صوفیزم کو ویلیو کرتے تھے. تو صوفیزم کے ہم لوگ ٹریس دکھاتے ہیں تو عام طور پر فلسفے کے اندر صوفیزم کے 3 ٹریسز دکھاتے ہیں انٹلیکچولی. وہ کہتے ہیں کہ مسلم صوفیزم کے ٹریسز بدھزم میں بھی ملتے ہیں, مسلم صوفیزم کے ٹریسز جو ہیں نیو پلاٹونزم میں بھی ملتے ہیں اور صوفیزم کے جو ٹریسز ہیں وہ آرین یا پرشین ریئیکشنز میں بھی ملتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ صوفیزم کے اندر جو کچھ خیالات ہیں وہ پہلے بدھزم کی کسی فارم میں یا پرشین ریئیکشن میں کسی فارم میں یا نیو پلاٹونزم یا کرسچینٹی کی فارم میں موجود تھے, لہذا صوفیزم کسی طور پر انفیریئر ہے ان سب سے. وہ کہتے ہیں فلسفی آف ہسٹری کے اندر ہم اس بنیاد پر کسی تھاٹ کو انفیریئر نہیں کہتے کہ اس کے کچھ ٹریسز اس تھاٹ سے پہلے کسی تھاٹ میں پائے جاتے ہوں, اس کی کوئی انٹلیکچوئل گارنٹی نہیں ہے. لیکن ایک عام رویہ انسانوں کا یہ ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر انفیریئر کنسیڈر کرتے ہیں اس تھاٹ کو. دوسری وہ بات یہ کہ جب ہم کسی بھی تھاٹ کا انالیسس کرتے ہیں اور وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایشو تھے یا یہ جو سوالات تھے مسلمان جو تھے وہ ظاہر ہے کہ سب سے ہسٹوریکل پروسیس میں کرسچنز کے بعد ہیں, اور کرسچن سے پہلے جو ہے وہ جیوز ہیں, اور جیوز سے پہلے جو ہیں وہ گریکس ہیں, رومنز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طور پر انفیریئر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سوالوں کے جوابات تو بہت پہلے لوگوں نے دی. ایک تو یہ. دوسری بات کہ اگر فرض کیا کہ کسی سویلائزیشن کی اسٹرینگتھ اس بات پہ نہیں ہوتی تھی کہ اس نے اپنی میٹافزکس یا اپسٹمالوجی یا ایتھکس یا ایتھیٹکس کس طرح سے ڈیولپ, سوال یہ کہ اس میٹافزکس میں کتنی قوت تھی کہ وہ چیلنج کر سکی اس میٹافزکس کو جو بعد میں کرسچنز نے یا مسلمانوں نے دی. عام طور پر ہمیں جس سطح پہ اسے تولنے کی ضرورت ہے وہ یہ سطح ہے کہ کتنی افیکٹولی وہ افیکٹ کر سکتی ہے, جو خالد بھائی کا سوال ہے اصل میں کہ بھائی انہوں نے اس تھاٹ کو متاثر تو کر دیا ایرسٹوٹیلین تھاٹ نے. دیکھیں کوئی بھی ایسا فلسفہ جو کہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کا ہو, اور کوئی ایسا فلسفہ جو کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ کا ہو, ان کا کمپیریٹو انالیسس کرتے وقت آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس فلسفے کے پروان چڑھنے کے نتیجے میں زیادہ کیا حاصل کرنے کے قابل آپ بنے. یعنی کہ کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ کی طرف آپ کا رجحان, رویہ یا جھکاؤ بڑھا, یا کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کی طرف. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ویسٹرن تھاٹ آپ کو اپیلنگ اور میننگ فل اس لیے لگتی ہے کیوں, کیونکہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ آپ کو ڈومینیٹ کر. گریک تھاٹ پڑھنے کے بعد کتنے امکانات ہیں آپ کے کہ آپ کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ کی طرف رجوع کریں, کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کی طرف آپ کے جھکنے کے امکانات بڑھیں گے یا کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ کی طرف. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ ڈومینیٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہی فلسفے ڈومینیٹ کریں گے نا جو کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ سے کنسسٹنٹ ہے, اور وہ فلسفے کمزور ہو جائیں گے جو کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ کے فلسفے. نہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی آپ ان کے مذہب کی بات کرتے وہ کہتے ہیں او یہ فضول بات ہے, لیکچر آپ دے رہا کیوں. ارے بھائی لیکچر ہی تو دے رہا تھا. تو جیسے ہی ریلیجن فوراً کوئی چکر چلانے والا ہے, یعنی آؤ یہ جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہے گا جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں, یا زمین سے نیچے کی بات ہے آسمان سے اوپر کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کے لیول پر رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے اپنی ذات کو کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کی سطح پر محسوس کر لیا اور کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ سے آپ نے اس کو کاٹ دیا, مائنس کر دیا, تو افیکٹو دنیا میں کامیابی ہیں حاصل کرنے کے لیے تو وہی فلسفہ کامیاب ہوگا نا جو کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کا ہوگا. تو ایرسٹاٹل زیادہ ڈومینیٹ کیوں کر گیا؟ اس لیے کہ کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ سے زیادہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کی بات ہو سکتا ہے, اس لیے وہ پاپولر ہو گیا. اور دنیا میں جب بھی ان راج کیا کرسچنز نے شکست نہیں, 100 سال کے اندر دھول چٹا دی پوری ویسٹرن سولائزیشن, گریکو رومن سولائزیشن جسے آپ کہتے ہیں, 100 سال کے اندر کرسچن نے ان کو دھول چٹا دی. یعنی کہ پہلی صدی کے اندر انہوں نے کنورٹ کر دیا بادشاہ کو بغیر کوئی جنگ لڑے, اور ان کے پاس ایک بائبل بھی نہیں تھی. کیا اسٹرینگتھ ہوگی ان کی موریلٹی کی یا مورل اسٹرینگتھ کیا ہوگی ان کی کہ جیوز بھی مار رہے ہیں, پروفٹ کو انہوں نے کروسیفیکیشن تک پہنچا دیا, मार मार के भुरकस निकाल दिया। बत्रुस की और पॉल की मेजर लड़ाई हो गई, उसमें बत्रुस जो एक मेजर आदमी है मारा गया, उसके बावजूद जो है वो कॉन्टेस्टाइन को कन्वर्ट कर दिया। और कैसा कन्वर्ट किया, कॉन्टेस्टाइन ने रोम को छोड़ के बाइजेंटाइन आ गया। तो इसका मतलब है कुछ था ना उनके पास, थोड़ी देखा कि एरिस्टोटल प्लेटो से कितनी चीज कंसिस्टेंट हो। मैं जैसा बाइबल कहता है वैसे ही करूंगा, वैसे लाहम में आ गया और रोम को छोड़ दिया उसने। अगर ये कहता है टॉनी कि अगर वो रोम में ही बैठा रहता बादशाह, कॉन्टेस्टाइन रोम में ही बैठा रहता, तो रोमन पापाइसी इतनी डेवलप नहीं होती और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए वो पैदा नहीं होते। बादशाह निकल के इधर आ गया और सेंटर जो था वो रोम बन गया, वहां पे पोप बैठ गया जाकर, इधर बादशाह इधर आ गया, तो वो पोप बिल्कुल ही आजाद हो गया बादशाह के उससे। तो उसकी मनमानी उसने इंटरप्रिटेशंस करनी शुरू की। तो रोम हमेशा दूर रहा, एपी सेंटर जो था वो क्या है, दो हो गए पावर ऑफ सेंटर, एक रिलीजियस एपी सेंटर हो गया जो रोम में चला गया और जो पॉलिटिकल एपी सेंटर था वो इसके पास आ गया, किंग कॉन्टेस्टाइन के पास। तो मतलब ये कि ये कहना कि इन सवालात के जवाबात क्यों प्रिवेल कर रहे हैं, इसलिए प्रिवेल कर रहे हैं कि लोग दुनियादार हैं। सिंपल सी बात है, लोग दुनियादार हैं तो दुनियादारी का फलसफा परवान चढ़ेगा, और लोग दीनदार होंगे तो दीनदारी का फलसफा चढ़ेगा। इसमें कोई ऐसी तोप चलाने वाली थोड़ी बात है। अगर एक आपका जो मजहबी जमात या हेड है वो एक घंटे तक गुफ्तगू करे इस बात के लिए कि मेरी गाड़ी के अंदर जो सीट लगी है वो मैंने कैसे लगवाई है, एक आदमी से इंटरव्यू करने गया, मजहबी आदमी है, वो भी मजहबी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उसने कहा मौलाना साहब जल गया, वो जब जल गया उन्होंने कोई मजहब की बात नहीं कर रहा नहीं कर रहा, तो उसने जल के पूछा मौलाना आपकी गाड़ी की सीट तो बड़ी जबरदस्त है, तो उस पर एक घंटे गुफ्तगू की उसने, एक घंटे गुफ्तगू। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका आदमी जो कि रिलीजन को उसको देख के आपको अल्लाह याद नहीं आ रहा, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं आ रहा, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि गजाली का फलसफा डोमिनेट करें, ये कैसे है? तो बिल्कुल अनरीजनेबल डिमांड है, बिल्कुल अनरीजनेबल। आपका जिस किस्म का इंसान होगा उसको वही बात भाएगी, जिस तरह का वो ठीक हो जाएगा तो वो फलसफा डोमिनेट कर जाएगा। रोमन ग्रीक और रोमन फिलोसफी दैट बिलीव इन द इटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड, इटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड की जस्टिफिकेशन निकलती है एरिस्टोटेलियन फिलोसफी से कि दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। हम जो दुनिया जिस दुनिया में हम जिंदगी गुजारते हैं, हम लोग ये पता है ना कि हम लोग इस तरह बिहेव करते हैं कि जिंदगी खत्म नहीं होगी। अगर इस तरह हम जिंदगी गुजारते हैं कि हम लोग ये जिंदगी खत्म होगी, तो जाहिर है कि बिल्कुल दूसरी तरह की होती ना रवैया भी और एटीट्यूड भी और सबका। और ये कि सबसे पहले ये बड़े आदमी को करना होता है, आम आदमी को ये जिम्मेदारी नहीं होती, बड़े आदमी को पहले ऐसा करना पड़ता है, बड़े आदमी को इस तरह की जिंदगी गुजारनी पड़ती है। छोटा आदमी फौरन करता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान के बड़े आदमियों ने ऐसा किया करा और पाकिस्तान का छोटा आदमी, गरीब आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, कमजोर आदमी वो ये ना करे, वो उससे बढ़ के करेगा। लेकिन आपके 50-60 साल में आपने लोग ऐसे पैदा नहीं किए जिन्होंने कुर्बानी दी, और अगर कुर्बानी दी किसी ने तो वो नीचे तक पहुंची नहीं उसके इम्पैक्ट, और अगर इम्पैक्ट पहुंचे होते तो लोगों की जमीन तब्दीलियां रूनुमा होती। तो पहली बात तो ये है कि ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन कोई सिविलाइजेशनल प्लेन पर इतनी 1500 साल इन्होंने उठने नहीं दिया एरिस्टोटेलियन थॉट को, क्रिश्चियन जरूरत नहीं थी किसी एरिस्टोटेलियन हो जाता वो, उसने आहिस्ता आहिस्ता देखिये फलसफा तो फौर तो मौजूद है, आप दुनियादार हो गए दुनियादारी का फलसफा आप इख्तियार कर लेंगे, आप दीनदार हो गए दीनदारी का फलसफा आप इख्तियार कर लेंगे। तो फलसफा थॉट तो मौजूद होती है, और मुसलमानों के अंदर जो है वो ये थॉट मौजूद थी कि वो दीनदारी की तरफ ले जाए, लेकिन लोग जब दीनदार नहीं, आप देख लें अंग्रेजों के आने से पहले से मुसलमान क्या कर रहे थे, बटेरे लड़ा रहे थे, तवायफों के कोठे आबाद कर रहे थे। तो ये कौन सा मजहबी, क्या कौन सी मजहबी, भाई वो ये कहते थे हमारे यहाँ लोग एग्जाम्पल के तौर पर होते हैं कि वो जो है और तहजीब सिखाने के लिए तवायफ के कोठे पे भेजा जाता है, तवायफ के कोठे पे भेजा जाता है। तो भाई सारे पूरा माशा चला जाता है तवायफ के कोठे के ऊपर। तो भाई बताने का मतलब ये कि आपने आवाज कर रहे थे ना उसको, आप उसको आपका बादशाह ठुमके लगा रहा था, जो वो था क्या कहते हैं अवध का बादशाह, वो इतना बड़ा नाचने वाला था कि वो पहली सीढ़ी पे कदम रहता, पहला घुंघरू बजता था, सवीं सीढ़ी पे जहां पे बादशाह बैठता वहां पैर मारता था, छन 100 घुंघरू बजते थे सवीं सीढ़ी पे जाकर। तो मतलब ये कि दुनियादार थे लोग, इसलिए सैयद इस्माइल वगैरह सबको अकेला छोड़ दिया। कौन सी तहरीक है जो कामयाब हुई, लोगों ने सपोर्ट किया? कोई किसी तहरीक को सपोर्ट नहीं किया, सब दुनियादार थे। और 1857 में जो लोग लड़े वड़े वो आपका वो इस बुनियाद पे वो मोबिलाइज ही नहीं हुए सही तरीके से, आप सक्सेसफुली लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सके। तो अगर कोई ऐसा फलसफा है जो कहे सब कुछ मिलेगा तुम्हें, इसमें दुनिया भी मिलेगी और दरअसल दुनिया को कमाने के नतीजे में अल्लाह भी मिल जाएगा, तो जाहिर है वो फलसफा कामयाब होगा ना भाई। एक आदमी कहे कि मैं तुम्हारा बाप, मेरी मर्जी के खिलाफ अगर किया ना मार मार के खाल निकाल दूंगा तुम्हारी, और ये कहे नहीं मैं तुम्हारा दोस्त हूं, जो तुम्हें बदमाशी करनी तुम करते रहो लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो कौन सा फलसफा ये कि खाल गिराने वाला जल्लाद ये हो गए दोस्त, मेरा बात में मेरा दोस्त है, मेरा मेरे वालिद को अगर अभी पता चल जाए वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं बात करके छोड़ दे, मुझे मारेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे मेरी पिटाई करेगा, जो कुछ भी वो मार सकते हैं ना। तो पहले कहते थे अब मैं हाथों से मारता था, अरे हो गए बहुत मुस्कंडे हो गए, मैं हो गया हूँ बूढ़ा लिहाजा मैं चप्पलों से मारता हूँ। तो जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा हम लोगों की इज्जत में इजाफा नहीं हो रहा, कमी हो रही है। पहले वो हाथ पाथ से मारते थे, फिर डंडे वंडे से मारते, आप चप्पल फेंक के मार देते अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए उनको। अभी हमारे भाई की बकरी की खाल जो थी वो लेने आ गए पॉलिटिकल पार्टी के लड़के, वो 80 साल होगी उनकी एज, वो अपना बकरा कटवाते हैं, कहते हैं कौन उठाता है खाल में देखता हूँ, वो अपने बकरे काटते हैं उसकी खाल उठाते हैं उस पर डालते हैं और कहते हैं मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है, कोई उनको नहीं कुछ कहता। और मेरा जो मेरे से जो छोटा है उसने कहा यार ये बदमाश हैं, गुंडे हैं, ये तंग करेंगे, अच्छा ले ले जाओ। तो वो बकरी की दस्ती फेंक के मारी थी उसने कि तुम जवान आदमी, तो आपको जवान आदमी कहते हिजड़े, खाल दे दी तुमने अल्लाह की खाल उसकी बंदे का। उन्होंने कहा नहीं मैंने वो पैसे दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं, फला किया है क्या, उन्होंने खाना नहीं खाया दोपहर का, दोपहर का खाना नहीं खाया उन्होंने, बोरी मुझे उन्होंने ठंडा करते रहे, उनको बताते रहे देखें ये हो गया कोई बात नहीं, ये लोग उनको पैसे दे रहे हैं, भिखारी है वो तुम्हारे पैसों के, तुम्हें खड़े क्यों नहीं हुए तुम। तो भाई मसला ये है कि ऐसा आदमी दोस्तों में मैं देखो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम जाओ रात को जाओ शराबें पियो सिगरेटें पियो मेरे साथ ही बैठ के सिगरेट पियो, तो ये पॉपुलर हुए। या मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बीवी का मतलब क्या होता है? बीवी का मतलब ये होता है कि शौहर बीवी से कुछ ना पूछे कि तुम किसके साथ जा रही हो, किसके साथ आ रही हो, ये कौन है, ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, कौन है ये, वो कह नहीं मेरे शौहर मेरे पे बड़ा भरोसा करते हैं। जितनी एंकर पर्सन है टीवी के अंदर क्या कहती है, वो कहती है मेरे शौहर मुझसे पूछते ही नहीं। मैं अब देखे 5 दिन से मैं यहाँ हूँ उसकी नशरियात के ऊपर, इलेक्शन की नशियात पे 5 दिन से मैं अपने घर नहीं गई, लेकिन मेरे शोहर बिल्कुल बुरा नहीं है। भाई शोहर नहीं है ना, फिर वो शोहर नहीं है ना, क्या हो रहा है ये जिंदगी का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है जिंदगी के, लाइफ तुम्हारा क्या रोल है, बच्चे क्या हैं। तो शोहर ऐसे शोहर चाहिए जो दोस्त, ऐसे बाप चाहिए जो दोस्त, ऐसी माए चाहिए जो दोस्त हो, तो वो फलसफा डोमिनेट करेगा ना, आजादी का फलसफा डोमिनेट करेगा। तो अगर आपको फलसफा कौन सा प्रिवेल कर रहा है वो रिफ्लेक्ट करता है चेंज इन द माइंड ऑफ द पीपल, चेंज इन द हार्ट ऑफ द पीपल। तो इसकी बुनियाद पर हम फलसफे को थोड़ी कंडेम करते हैं, हम इसकी बुनियाद पर बीइंग को कंडेम करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा है, तेरी ख्वाहिश है कि तेरी हर तमन्ना हो पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी तमन्ना बदल जाए। तुम जो भी तमन्ना करते हो वो तुम चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश है कि तेरी हर तमन्ना हो पूरी। मेरी दुआ है कि तेरी पहले इंसान की तमन्ना तो बदले, तमन्ना ही नहीं बदल रही अगर तुम्हारी। और हर आदमी का जो तर्ज जिंदगी है वो यही है कि मेरा जो तर्ज जिंदगी है उसमें एक नुमाया फर्क आना चाहिए, मेरी स्टेटस रिफ्लेक्ट होना चाहिए मेरी एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और अगर नहीं तब्दील कर रहा मैं, तो या तो ये पागल है या फिर ये वकील है। पहले मेरे घर वालों रिश्तेदारों का ख्याल था कि ये पागल है, क्यों? क्योंकि जब ये लेक्चरर था तब भी इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यही था, और जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर था इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही है। इसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सब्सटेंटिव चेंज ही नहीं लेके आता। मैंने कहा देखिए ये वैल्यूएबल चीज नहीं है, और मैं नहीं चाहता है मेरे बच्चे स्टेटस कॉन्शियस हो जाए, स्टेटस कॉन्शियस हो जाए। तो अब वो ये समझते कि इसने बहुत माल बना के रखा हुआ है, बहुत माल, अरे खर्च ही नहीं करता ये, तो इसका मतलब बहुत माल होगा इसके पास। तो बताने का मतलब ये कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस सब कर रहे हैं ना, मजहबी आदमी के पास वो है 38 लाख की लैंड क्रूजर्स, सर्व्स, रोड राइडर्स, वो है ना उसके पास। 36 लाख की गाड़ी कहां से आ गई भाई तुम्हारे पास, कैसे आ गई तुम्हारे पास? हुमैनी से एक आदमी मिलने आया, फकीर था ईरान का बहुत, जब रेवोल्यूशन से पहले भाग गया था, तो जब वापस आया तो उसने कहा कि उसने फौरन विलायत फकीर को सपोर्ट कर दिया है वो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मिलने आया, तो उन्होंने कहा गाड़ी वो आया था रोल्स रॉयस पे, तो उन्होंने कहा रोल्स रॉयस पे आया मिलने के लिए मेरे, तो उससे नहीं मिले। तो वो बड़े जो थे जो अहम लोग थे जो निगोशिएशन चाह रहे थे उस वक्त विलायत फकीर को सपोर्ट करने वाले, उनको फकीर चाहिए थे, तो वो नहीं मिले उससे।
एंड ही वाज इकोनॉमिस्ट टू,
हाँ, तो उन्होंने कहा जो फकीर ही नहीं हुआ वो फकीर क्या हुआ, इससे तो नहीं मिल सकता, भगा दिया फौरन से। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो वो बेसिकली अरब था, तो जो इराक के अंदर जो था वो बहुत ज्यादा इरेजिस्टेंसी में लाए थे भाई ये कॉन्सेप्ट की, तो वो उसको इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं उन्होंने कबूल की। तो बताने का मतलब ये होता है कि अगर मैं लिबरलिज्म की कोई क्रिटिक डेवलप करता हूं एक ऐसे माशरे के अंदर जिसके अंदर हर आदमी को आजादी चाहिए, तो मेरा फलसफा कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा ना, क्यों सुनेंगे? वो को आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। वो माशरे जिनके अंदर पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज का प्रॉब्लम है, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज का प्रॉब्लम ये है कि वो रही है अंडर द डोमिनेशन ऑफ कॉलोनियल पावर्स, लिहाजा कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ जहर कई सतहों के ऊपर हुई। एक जो बड़ी नुमाया उसकी कदर निकल कर आई वो आजादी, आजादी फ्रॉम व्हाट? आजादी फ्रॉम कॉलोनियल पावर्स। तो आजादी का मतलब क्या सेल्फ डिटर्मिनेशन है या सेल्फ सरेंडर है, ये हम नहीं समझते। क्या सैयद इस्माइल शहीद इसलिए जिद्दोजहद कर रहे थे कि लोग सेल्फ डिटर्मिंड ऑटोनोमस बींग बन जाए, इसलिए वो जंग लड़ने के लिए गए थे, या 1857 में जो मुजाहिदीन शरीक हुए थे, जो वाकई मुजाहिदीन थे वो इसलिए शरीक हुए थे कि इंसान जो मुसलमान जो है वो सेल्फ डिटरमिनेड ऑटोनोमस बीइंग बन जाए और ताकत का सरचश्मा आवाम बन जाए, इसलिए वो नहीं बने थे। वो तो सेल्फ सरेंडर के लिए बने थे। सेल्फ सरेंडर को सेल्फ ऑटोनोमी के साथ आपने रिप्लेस कर दिया, नतीजा ये हुआ कि आपने लिबरलिज्म की कोई क्रिटिक डेवलप नहीं किया। आपके बड़े बड़े जो मजहबी लोग हैं वो फ्रीडम फाइटर्स में और जहादीज के अंदर फख्र नहीं करते, वॉर ऑफ लिबरेशन और जहाद के दरमियान वो बिल्कुल एक ही चीज समझते हैं दोनों। आप ये पढ़े इसको अपना बहुत सारे लोगों को वो वॉर ऑफ लिबरेशन और जहाद को एक ही चीज समझ रहे हैं। वॉर ऑफ लिबरेशन तो तमिलनाडुज भी कर रहे हैं, गोरखास भी कर रहे हैं, मैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं, बहुत तरह के, तो वो जहाद कर रहे हैं, जहाद हो गया। तो वो अगर सेल्फ डिटरमिनेड ऑटोनोमस बीइंग का फलसफा ही प्रमोट हो रहा है, चाहे वो मजहबी कर रहा हो या गैर मजहबी आदमी कर रहा हो, तो प्रमोट तो लिबरलिज्म हो रहा है ना, वैल्यूज तो लिबरलिज्म की प्रमोट हो रही है। तो ये है बेसिकली ग्रीक थॉट का मसला ही नहीं, एक तो ये कि क्रोनोलॉजिकल जो चीज है कि हिस्ट्री किस तरह से डॉक्यूमेंट हुई, जाहिर है कि वक्त जो होता है अपने पहचानने वाले के हिसाब से ऑर्डर हो जाता है। यानी कि मैं जब वक्त को देखूंगा तो मैं अपने स्पेस और टाइम के अंदर रह के ही वक्त को देखूंगा ना, कि भाई पहले ग्रीक्स आए, उसके बाद फिर ये क्रिश्चियंस आए, उसके बाद मॉडर्निस्ट आए, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट आए। तो इसकी बुनियाद पे क्या मैं, मेरे पास ये दलील भी राशिक होती है कि ये पहले जो था वो सुपीरियर था और उसके बाद इंफीरियर था और उसके बाद इंफीरियर था और उसके बाद दूसरा इंफीरियर था। और तीसरी बात, एक नई चीज जो मुसलमानों के अंदर आम हो गई, पाकिस्तानी, इसमें कोई नई बात नहीं है, नई चीज चाहिए मुझे भाई, नई चीज क्या है? तुम्हें पैदा हो गए कितना अर्था हो गया, 50 साल के हो गए, तो अब तुम्हारी ये 50 साल पुराने हो गए ना तुम, तो ये हकीकत क्या है कि तुम 50 साल पहले पैदा हो गए, इररेलीवेंट हो गई कि तुम किसकी औलाद हो, ये तो इररेलीवेंट रहेगी हमेशा। तो सच अगर पुराना हो जाए तो सच नहीं रहता क्या वो? तो भाई मैंने उनको पढ़ा, उसमें तो कोई नई बात मुझे नजर नहीं। अबे भाई नई बात क्या, सिंपल बात है, तुम्हें ये करनी है, ये पहले कर लो, उसके बाद फिर नई बात भी तुम कोई तलाश कर लेना। वो कहते हैं नई चाहिए हमें, नई बात,
ये डेवलपमेंट के थॉट से तो नहीं आई कहीं ये चीज की, जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट लेके आए, ये चीज जो मतलब लेके आए, क्योंकि देखिए न्यूज लाइन में भी हमें ये बातें सुनने को मिलती हैं, अगर एक मिनिस्टर एक जगह एक बात करके चला जाता है, वो मिनिस्टर दूसरी जगह वही बात रिपीट करता है, तो भी पूछा जाता है कि इसको कोई नई बात,
हाँ कोई नई बात,
नई बात ब्रेक करें कुछ,
हाँ नई बात, हाँ। और मतलब ये कि रिलीजन के बारे में तुम्हें नई बात, वो भाई वो तो पहले दिन तो स्टार्ट तो पैगंबर आगे नई बात बता रहे थे, किसी पैगंबर ने आए कोई नई बात बता दी, कोई नया वो चला दिया क्या उनके ऊपर, कोई नई बात, कोई स्पॉन्टेनियस, कोई, तो भाई वो रियलिटी की क्रिएशन में नहीं मसरूफ थे, रियलिटी को अनवील्ड करते थे, उसी रियलिटी को जिसने जो जिसे लोग पर्दा डाल देते थे, फिर वो पर्दा उठा देते, भाई यही रियलिटी है, यही रियलिटी, यही रियलिटी, एक ही बात कहते रहते हैं। और दूसरी बात यह कि मुसलमानों की तारीख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं होती, मुसलमान पूरी तारीख को ओन करते हैं, टाइम इज एब्सोल्यूट फॉर मुस्लिम, हम हजरत आदम से शुरू करते हैं, हम अपने हमारे जो पैगम्बर हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद भेजते थे, हमारे जो पैगंबर के सहाबी थे वो सबको ओन करते थे, और यू नो व्हाट आई मीन, तो हम कोई अपने आप को अलग नहीं करते तारीख के अमल से, हम कहते हैं कि हम इस्लामिक थॉट, दे वर ऑल मुस्लिम्स, ऑल प्रॉफिट्स वर मुस्लिम्स, एंड वी आर रिलेटिंग आवर सेल्व टू ऑल दोज प्रॉफिट्स विच आर बींग नोन और विच वी वर नॉट एबल टू डिस्कवर देम, वी ओन ऑल ऑफ देम एंड वी ओन ऑल दैट थॉट, all that thought that has been reconciled in Islam. इसलिए हम इस्लाम को आखिरी मजहब मानते हैं और हम क्रिश्चियनिटी की तर्दीद नहीं करते, हम उसकी उसकी थॉट को आगे बढ़ाते हैं। और हजरत ईसा ने भी कोई 10 कमांडमेंट्स की तर्दीद नहीं की थी, 10 कमांडमेंट्स को आगे बढ़ाया था, यही तमाम प्रॉफिट्स करते आए। और ये कि हमारा जो रूट है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पीछे से हमारी रूट्स हैं, जो ग्रीक्स और रोमन से भी बहुत पहले गए, तो इस वजह से हम तो ये नहीं समझते किसी तौर पर भी ये इंफीरियर है, लेकिन हमारे सामने कौन सा फलसफा प्रिवेल करेगा और कौन सा फलसफा पनपेगा और कौन सा फलसफा डेवलप होगा, वो लोगों के हाल और मकाम से डिटरमिन होता है। लोगों का हाल मकाम कुछ हो, अभी आप देखेंगे टीवी के ऊपर आके एक 2% की आर्टिस्ट, उसके लिए कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैं डेकोरम की वजह से कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो आपको बताती है कि इस्लाम को सही समझा नहीं गया, वो बता रही है इस्लाम को सही नहीं समझा गया, उसको समझ में आ गया, जिसका काम क्या है पैसे लेके फिल्में करना, ये उसका काम, ये उसका काम है, वो कह रही है इस्लाम को सही नहीं समझा गया और लोग सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बात चलने वाली है, लोग उसको, लोग जब ज़कात और फितरे की रकम के लिए भीख मांगने आ जाए टीवी, तो वो आ जाता है टीवी को, वो अबरार जो है वो हर उससे पहले एक वो चलाता है अपना हॉस्पिटल खैराती हॉस्पिटल और स्कूल्स भी उसने चलाए हैं, तो वो लेता है जकात और फित्र वगैरह। तो वो क्या करता है, ईद से बकर जो मीठी रमजानों से पहले वो कोई एक सूफियाना कलाम गा देता है कोई, मैं इसको मॉनिटर करता हूँ मुस्तकिल एक इस तरह। इस दफा उसने वो बाबा बुल्ले शाह कोई कलाम, या अभी तो उन्होंने अपना खुद का अपना ही कलाम उन्होंने गा दिया, तो वो आ जाता है, उसका रिलीजियस कलर आ जाता है थोड़ा सा। और उसके बाद और फिर ईद के बाद जो ईद वाला शो होता है उसके अंदर किसी को साइकिल पर बिठा रहा होता है, पूरे पंजाब की औरतों को नचा रहा होता है, फिर उसके ऊपर लोग एतराज करते हैं, भाई सारे पंजाब की औरतें नच पंजाबन, तो नहीं पंजाबन को हटा के मजाजन लगा दिया। आपको क्या मतलब, ये पंजाब का कल्चर जो है वो हाईली रिलीजियस कल्चर रहा है पंजाब में, आप पूरे पंजाब के बारे में कहेंगे क्या? तो बताने का मतलब ये कि वो आदमी सरवाइव कर रहा है, लोग उसको इज्जत देते हैं, लाखों रुपए देते हैं लोग, इसका मतलब है कदर तब्दील हो गई ना। पहले कदर ये थी कि अच्छा काम अगर कोई करने जा रहा होता तो उसके किरदार को, उसके रवैये को, उसके जरिए सब चीजों को कंसिडर किया जाता, फिर उसको यहां दिया जाता था कि वैल्यू गिविंग, वैल्यू डिटर्मिनेंट के तौर पे हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक आदमी को सेलिब्रिटी के तौर पर आप पेश कर रहे हैं और वो सेलिब्रिटी जो है वो नेसेसरली इस बुनियाद पे वैल्यूएबल नहीं है कि वो रिलीजियस है या खुदा से डराता है, ये वो ये प्रिज्यूम कर लिया कि ठीक है वो पाकिस्तानी और मुसलमान है और किसी न किसी तौर पर पाकिस्तान के गरीब लोगों की मदद करना चाहता है ना, उसके हॉस्पिटल में गरीब लोगों का इलाज होता है, एक अच्छी बात है ना, बुरी बात तो नहीं है, गरीब बच्चे स्कूल पढ़ लेते हैं, तो स्कूल में पढ़ना और इलाज करना, इसका इस्लाम से कोई नेसेसरी रिलेशनशिप तो नहीं है ना। दुनिया में बहुत सारे चैरिटी हॉस्पिटल है जो कि गैर मुस्लिम चलाते हैं, बहुत अच्छी तरह चलाते हैं, बहुत एफिशिएंटली चलाते हैं, स्कूल दुनिया में बेशुमार चलाते हैं, तो इसका मतलब ये तो इसका मतलब है अच्छाई करने के लिए रिलीजियस होना जरूरी नहीं है, अच्छाई है तो वर्ल्ड स्पेसिफिक ही ना, स्कूल चला के मैं क्या करूं या हॉस्पिटल चला के, अवॉइड द डेथ एंड जस्टिफाई द प्रोग्रेस, यही है ना, को रिलीजियोसिटी तो प्रिवेल नहीं करती ना। हाँ आप दुआ दे देते हैं, दुआ मिल जाती है, वो लोग दे दे या नहीं दे, तो बुनियादी तौर पर जो प्रिवेलिंग कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड प्रिवेल करता है ना, उसके नतीजे में। तो मैं ये बता रहा हूं कि लोगों का जो एटीट्यूड है वो ये है कि वी वॉन्ट एक्टिव सिनर देन फ्यूटाइल सेंट्स, ये बर्नार्ड शॉ का कॉल है, एक्शंस आर मोर लाउडर देन वर्ड्स, वन एक्टिव सिनर इज बेटर देन 10 फ्यूटाइल सेंट्स,
इट्स वन गुड।
हाँ तो वो कहता है
पीपल मोस्टली यूज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट,
वो ये कहता है कि भाई ये लोग जो है जो गुनाहगार आदमी है लेकिन वो कुछ करता है, भाई ठीक है आप कहें अबरार बहुत गुनाहगार है बहुत बदमाश है, लेकिन ये कि गरीब आदमी के बच्चे का इलाज हो गया उसके हॉस्पिटल में तो दुआ देगा ना उसको, लेकिन वो इलाज कैसे करवा पाया, इसलिए कि वो मशहूर हो गया है गाने गा गा के, किसी कोई टीचर बना सकता है स्कूल। हाँ बाजी, हाँ नहीं पता नहीं, ठीक है मैं जाता हूँ तो फिर बात करा, ओके वाह अच्छा। तो ये बेसिकली जो ग्रीक थॉट के हवाले से हम देखते रहे वो ये कि ग्रीक थॉट जो है वो पेगन थी, दुनियादार थी, और लेकिन उसके बावजूद भी वो रियलिटी को ऊपर रखती थी, इसलिए वो मॉडर्निज्म ने उसको पूरा का पूरा एक्सेप्ट नहीं किया, उसको बहुत कुछ ट्रिम करने के बाद एक्सेप्ट किया।
सवाल ये मतलब अहम सवाल ये कि मतलब ये जो जो आपने बताया अभी मतलब कि अबदार तब्दील हो रही है, लोग जो है मतलब ये कि इसको पसंद करते हैं, तो सवाल ये है मुझे मॉडर्न फिनोमेना होंगे सामने नहीं है, मतलब उमूमी तारीखी तौर पर जो है मतलब या तो अबदार जो है माशरे से आती हैं या किसी पर्व से आती हैं या किसी रिविल टेक्स से आती हैं, मतलब तो ये कि अब जो मतलब अबदार की تبدیلی کا عمل ہے تو آیا معاشرہ تو ظاہر ہے اس کا کوئی اثر انداز جو ہے ہو نہیں رہا, یہ تو ادارے ہیں جو کہ اثر انداز ہو رہے ہیں. مطلب
صحیح بات ہے,
تو تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ
اتنے آرگنائز ادارے ہوں.
تو یہ جو ادارے جو ہیں مطلب تو ان کا مقابلہ جو ہے کہ مطلب یہ کہ وہ ہے تعلیم میں ہے کہ مطلب ادارتی شخص بندی کے بغیر ممکن ہے یا نہیں ہے. مطلب یعنی اگر رومن امپائر کو یہ مطلب عیسائیت تنگڑی لولی عیسائیت عطا کر سکتی ہے بغیر کسی ادارے کے,
بالکل
ادارے تو ان کے پاس بھی تھے بہت زبردست جو ہے مطلب
انسٹیٹیوشن اتنی بہت
مطلب تو ادارے کے بغیر انہوں نے جو ہے کہ تنگڑی پولی مذہبیت میں اس کو پتہ کر لیا اپنی اخلاقیات کی بنیاد پر. تو کیا مطلب کہ جو ماڈرن اسلامی تحریکیں ہیں وہ اس بات کو کیوں نہیں ریئلائز کرنی کہ اداروں کے بغیر بھی جو ہے اداروں کو تسکیر کیا جا سکتا ہے؟
بنیادی طور پر یہ بھی ایک ماڈرن فنامنا ہے کہ جو ہماری جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کے 200 سال, جو پچھلے 200 سال ہیں اس میں جتنے بھی انقلابات یا 300 سال میں جتنے بھی انقلابات آئے وہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے. انقلابات کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو سکسیزفل ریولوشنز آئے ہیں وہ اس ایک آرگنائز انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی مدد سے آئے, اور وہ انسٹیٹیوشن جو تھے وہ اسی طرح سے آرگنائز ہوئے جس طریقے سے ماڈرن اسٹیٹس جو تھیں وہ اس کے انسٹیٹیوشنز موجود تھے, اور ان انسٹیٹیوشنز نے اپنے اندر وہ اسپیس پیدا کر لی جو کہ اسٹیٹ کی پاور کو ڈسمینٹل کرنے کے بعد وہ پاور اپنے اندر سمو لینے کے قابل تھے. اور دنیا میں جو سکسیزفل انقلابات آئے وہ جتنے بھی انقلابات ہیں جو کہ وہ آئے وہ بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ انقلاب ہی تھے. تو اس کا مطلب ہے سرمایہ داری کو کوئی ایسا سبسٹینٹیو چیلنج پوز نہیں ہوا, بلکہ اس کے نتیجے میں سرمایہ داری نے اپنی کمزوریوں کو پہچانا اور مستقبل میں آنے والے انقلابات سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس نے اپنے آپ کو زیادہ بہتر اور زیادہ آرگنائز اور زیادہ مضبوط کیا. ہماری جو مذہبی تحریکیں ہیں وہ بنیادی طور پر جس قسم کی ادارتی سب بندی کرتی ہیں اس میں پہلا تو بیسک پرابلم یہی ہے کہ وہ تھیوریٹیکلی اس بات پر کنوینسڈ ہیں کسی نہ کسی حد تک کہ گروتھ میں, پروگریس میں, ڈیولپمنٹ میں کوئی اقداری قسم کا پرابلم نہیں ہے. گروتھ ان اٹ سیلف انٹرنزیکلی نیچرل پروسیس ہے, پروگریس اور ڈیولپمنٹ انٹرنزیکلی ایک نیچرل پروسیس ہے, اور اس میں بے تحاشا اضافہ کرنا اور اس کے نتیجے میں وہ خیر مسلمانوں میں اور اچھے انسانوں کے اندر پھیلانا اور اس کو بنیاد بنا کر مزید خیر کو پروموٹ کرنا انٹرنزیکلی کوئی پرابلمٹک چیز نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ گروتھ کو ویلیو نیوٹرل چیز, ایک ٹیکنیکل چیز سمجھو گے تو آپ یہ دیکھو گے کہ گروتھ افیکٹولی کہاں کہاں کس کس میکینزم کے تھرو ہو رہی ہے. تو وہ انسٹیٹیوشنز کو تو آپ لیجیٹمائز کرو گے, وہ ساری انسٹیٹیوشن آپ نے لیجیٹمائز کیے. بھائی آپ ماڈرنزم کی کریٹک دے رہے ہو, اور ماڈرنزم کی جو بہترین انسٹیٹیوشن ہے, جو سب سے اسٹرانگیسٹ فارم ہے, ڈیموکریسی اور کیپٹلزم, دونوں کو آپ نے قبول کر لیا, دونوں نے کو آپ نے قبول کر لیا, اور کہنا آپ اسلامی انقلاب لے آئیں گے, کوئی نہیں سکتا. ڈیموکریسی تو سب سے سکسیسفل فارم ہے, پولیٹیکل فارم. ماڈرنزم کی سب سے کامیاب جو شکل ہے نا وہ لبرلزم ہے, جس نے دھول چٹائی, بڑی بڑی ایڈیالوجیز کو دھول چٹا دی اس نے, اسے آپ نے پورا کا پورا اون کر لیا. اور لبرلزم کی یہ فحاشی وغیرہ ہوتی ہے, بس یہ گندی بات ہے, یہ گندے کام ہے, فحاشی وغیرہ نہیں ہوتی, باقی سب آزادی ہونی چاہیے, ہیومن رائٹس ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, بس یہ فحاشی وغیرہ تھوڑی اس میں بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ نہیں ہونی چاہیے, گندی بات ہے, باقی تو سب ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ آپ اس قسم کی ایروٹزم جب چلاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو پہلی بات تو یہ کہ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر آپ نے بنایا, نیسسریلی وہ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر آپ نے بنایا جو کہ کنسسٹنٹ ہے اس پوری کے پورے نظام زندگی کے ساتھ. میڈیا آپ کو چاہیے, اخبار آپ کو چاہیے, آپ کو ٹی وی چینلز آپ کو چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر سیلیبریٹیز بن جائیں, लीडर वो होता है जो ज्यादा देर तक टीवी पे रहता है. ये मुझे मजा भी आया, पार्टी का आदमी इतनी बड़ी गाड़ी वाला आदमी करे कि भाई लीडर वो होता है जो टीवी पे ज्यादा देर है. मैंने कहा भाई वो लीडर नहीं होता. नहीं नहीं वहां पर आप तो अजीब बातें करते हैं, आप तो ज्यादा सब मारे जाए जंगल में आके बैठ गए. मैंने कहा भाई जंगल में जाने की बात नहीं, ये तो सेलिब्रिटी का काम है, वो करेगा. बोले नहीं नहीं सब लोग उसकी तरफ देखते, सब लोग देखते हैं टीवी के थ्रू उसका ये ख्याल. मैंने कहा भाई देखो सब लोग टीवी के थ्रू नहीं देखते, सब लोग मल्टीनेशनल कोऑपरेशन जो टेलीविजन को इश्तेहारा देती है उसके वो जहां देख रही होती है लोग उसको देखते हैं. तुम्हारे लीडर को कोई नहीं देखेगा और लीडर को देखने की जरूरत नहीं है लीडर को. ओएस खनी ने प्रॉफिट को नहीं देखा था, उसके बावजूद सहाबी थे. नहीं देखा ना कभी, दांत तोड़ लिए, फिर एक दांत पता नहीं कौन सारे दांत तोड़ लिए. करे कोई तोड़ के दिखा सकता है? वो होता है जेन्युइन लीडर. जेन्युइन लीडर वो होता है जिसको बगैर देखे लोग अपने दांत तोड़ दें. कोई टेलीविजन चैनल के थ्रू थोड़ी जाते थे, टेलीविजन चैनल आए इंटरव्यू दे रहे हैं आप और कह रहे हो मुझे तो इंटरव्यू कोई नहीं देता, तो पहले तो इनके ऐसे आदमी को वो हायर करो जो कि लोगों को ले जा ले आके खाने खिलाता है.
पीआरओ
पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो साहबियों खाना खिला, जो साहबी खाना खिला के तुम्हारी खबर लगा रहा हो, कभी तुमसे इंस्पायर हो, कभी तुम्हारी इज्जत करेगा? उसी तरह के बदमाश है जिस तरह दूसरे बदमाश है. तो पहली बात तो ये कि आपने जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये कि इंस्टीट्यूशन आपने बनाए और वो इंस्टीट्यूशन बनाए जो कि आपकी तारीख से निकलते ही नहीं है, उनका आपकी तारीख से कोई ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक एक दूसरी तारीख से है. भाई ठीक है अमरीका के अंदर इफेक्टिव रहा होगा, चाइना के अंदर इफेक्टिव रहा होगा, आपकी तो अलग तारीख है ना, आप दूसरे इंस्टीट्यूशन बनाते. इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि इंसानी जहनी इर्तका की जो नहज इख्तियार की वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वही असल में रास्ता है, लिहाजा हम भी वही इंस्टीट्यूशन बनाए. आप कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन बनाए तो अमरीकन से आके हाथ पकड़ेंगे आपके, अमेरिकन ने आके मना किया क्या? नहीं, ये इंस्टीट्यूशन नहीं बनाना. इसका आप सोच ही नहीं सकते कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन के अलावा. लोगों की फलाह के लिए आप हॉस्पिटल ही के बारे में ख्याल आता है ना आपको, यानी कि लोग बीमार हो के हॉस्पिटल आते हैं, कोई आप काम नहीं करेंगे लोग बीमार ही ना हो, ये आप कंसीवेबल ही नहीं है आपके लिए कि आप कोई और दूसरा निजाम जिंदगी ऐसा वजह करें कि हॉस्पिटल में जाना मुमकिन ना रहे. अभी भी सहारा के अंदर ऐसे इलाके हैं जहां पर बीमार नहीं होता है, और अगर कोई बीमार हो जाता है उसका फिर मौत वाकई हो जाती है. तो वो कहते हैं कि भाई बीमार होने का मतलब यह है कि नेचर नहीं चाहती कि अब तुम रहो, और अगर तुम ठीक हो सकते हो तो नेचर के अंदर ही वो होना चाहिए अवेलेबल उसका हल, और अगर नेचर के बाहर से कोई तुम उसका हल ला रहे हो तो उसके अंदर नेचर को डिस्ट्रॉय करोगे डेफिनेटली. लिहाजा हम कोशिश करते हैं इसका बीमार नहीं पड़े, और कई कई दिन खाना नहीं खाते. जो अफ्रीकन बुशमैन है वो 8-8 घंटे जानवर के पीछे भागते हैं, 8-8 घंटे जानवर के पीछे भागते हैं, जानवर थक के खड़ा हो जाता है तो उसको स्पीयर मार के गिरा देते हैं, और कभी कभार जानवर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाते हैं, वापसी पे भूखे ही वापस आए, भूखे सो जाते हैं. यानी कि वो और पीछे उनको नया धंधे पे लगा दिया, वहां से उठा के उनको ले जाते हैं मैराथन में भगाने के लिए, तो उनका तो काम ही यही है. हिरण के पीछे जो आदमी भाग रहा है उसमें इंसानों से भाग रहा है आगे, तो सबसे आगे निकल जाता हूँ, उसके बाद वो पैसे वैसे भी मिल जाता है, अपना ओवल्टीन वगैरह पीता है, इंश्योर वगैरह पीता है, अगर आ जाए वो कहता है अच्छा चलो खाने को भी मिलता
है.
तो वो जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उन्होंने इस पे काम किया है कि ये होता कैसे है कि उस जानवर के साथ इक्वेशन कैसे डेवलप हो जाती है. जानवर कुछ देर के लिए बहुत तेज भागता है और डिस्टेंस को बहुत बढ़ा देता है, उसके बाद फिर वो रुक जाता है क्योंकि बहुत तेज भागना थक जाता है. ये एक आहिस्ता स्पीड से उसके ट्रैक देखते हुए भागते 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 वो फर्ज किया उसने 5 मिनट में बहुत दूर चला गया, ये 2-1.5 घंटे में वहां तक पहुंचता है. 1.5 घंटे में वो जानवर कहता है बदमाश फिर आ गया काला, फिर वो भागता है, फिर वो भागता है, फिर वो आएगा और थक के खड़ा हो जाता है, उसको उससे माफी मांगता है, उसको मार के खा जाता है. तो बताने का मतलब ये कि ऐसी तहजीब आप कोई तो दूसरी तहजीब, आपके ख्याल में इंसानियत की खिदमत करने का मतलब है एक हॉस्पिटल बना दिया जाए, दैट्स द एंड. एक स्कूल खोल दिया भाई, स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन से पढ़े लिखे लोग हैं. मैं पढ़ाता हूँ ना मास्टर्स को, मुझे पता नहीं है कि किस प्रकार के लोग निकलते हैं मास्टर्स के. मास्टर्स के अभी हम जो सीबीएम में पढ़ाता हूँ तो आखिरी जो क्लास लेता हूँ तो उसके अंदर वहां पे एक एक नंबर के लिए लोग मरते हैं, ये ग्रेड होता है ये वो. तो आखिरी जो क्लास होते हैं ना उसको मैं कहता हूँ अच्छा बड़े बड़े अपने आप को वो इंटेलेक्चुअल उनको खड़ा कर देता हूँ, आ जाओ मैं बैठ जाता हूँ. उसके बाद कहता हूँ अच्छा चलो इस पे बात करो, अब मेरे क्रॉस क्वेश्चन है दो तीन में पसीने छूट जाते हैं, ए करता हूँ पसीने टांग सब टांग बैठते हैं और बैठ जाते हैं. सर इसका वेटेज क्या है, मैंने कहा इसका कोई वेटेज नहीं है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहा है, ये तुमने 45 आवर इसके ले लिए सेमेस्टर के और तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारी औकात ये है कि तुम दो लफ्ज नहीं बोल सकते, इतनी जरूरत नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम के, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा जो बैठा हुआ है उस्ताद उसको पता है, लेकिन तुम माशरे में जाके भगोड़ के रख दोगे माशरे को. अगर उससे बोले डी ऑन्टर लगो मुझे आप माइनस कर दें क्लास से बाहर निकाल फिर देंगे वो कैसा बक बक करेगा. तो बताने का मतलब ये कि फौरन चुप हो जाता है ना, तो उसको उसको कुछ सरोकार नहीं है उससे कि वो क्या पढ़ रहा है, उससे सरोकार है अपने ग्रेड से. तो ये जो एजुकेशन स्कूल खोलने से मसला सारा हल हो गया. स्कूल खोलने से क्या हो गया भाई, स्कूल तो खुले हुए है ना माशरे के अंदर. तो बताने का मतलब ये कि आप कोई दूसरा तरबियती निजाम, कोई दूसरा इदारा, कोई दूसरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अदर देन दिस. मैं ये नहीं कह रहा इनको सब बंद कर दो, इनको तबाह कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो, लोग मर रहे हैं रोडों के ऊपर सिसक रहे हैं, ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई दूसरा, यानी कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बेशुमार जगहों के अंदर लोग काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन को डेवेलप कर रहे हैं. आपने कोई करने की जरूरत ही महसूस नहीं करते, तो ये समझते हैं कि इस तरह इनकलाब आ जाएगा. बल्कि अब तो मेरा ख्याल है कि इनकलाब सब जो वो कहते हैं कि रिफॉर्मेशन हम करेंगे. पाकिस्तान इस्लाम का मसला ये है कि रिफॉर्मेशन नहीं हुई है मुसलमानों की, दे हैव नॉट बीन रिफॉर्म्ड लाइक द वे क्रिश्चियनिटी हैज बीन रिफॉर्म्ड एंड रेफॉर्मेशन एंड काउंटर रेफॉर्मेशन इनेबल अस टू डोमिनेट दिस रियलिटी. Since we are not able to have any kind of reformation and there is no counter reformation, so evolutionary process has been stopped. Stagnancy आ गई. तो वो stagnancy के नतीजे में जो सोच है वो एक कीचड़ की तरह है, गंदे पानी की तरह, जो जिसमें कोई वो बहाव नहीं है और ये वो फला इस तरह की बात है. तो बताने का मतलब ये कि जब भी हम institutional फ्रेमवर्क की सतह के ऊपर जाते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपने वो इंस्टीट्यूशन डेवलप किए जो वेस्टर्न हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के नतीजे में निकल रहे थे, ये समझते हुए कि ये नेचुरल है, हालांकि वो हिस्टोरिकल है. तो जो किसी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के नतीजे में पैदा हो रहा है तो वो हिस्टोरिकल आउटकम भी तो देगा, वो नहीं देगा. हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस पैदा होने वाला इंस्टीट्यूशन ए हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस देगा, हिस्टोरिकली देगा ना वो. अगर हिस्टोरिकली वो कंस्ट्रक्ट हुआ तो हिस्टोरिकली उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, तो वो कॉन्सिक्वेंसेज आप फेस कर रहे हैं. आज आपके माशरे में जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनका सक्सेसफुली हल सोशियोलॉजिस्ट क्यों तलाश कर लेता है, मस्जिद के मौलाना साहब क्यों नहीं कर पाते. इसलिए कि सोशियोलॉजिस्ट जिस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ रहा है वो सोशियोलॉजी डेवलप हुई है उस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के सपोर्ट के लिए, इसलिए सोशियोलॉजी उसका हल बता देता है क्योंकि वो उसी से निकली है. वो इस्लाम निकला है क्या उसके अंदर से, इस्लाम हल बता दे. इस्लाम क्या इंसान का बच्चा बन भाई, तो नहीं मैं ये ख्याल आते रहते नहीं, बोले इंसान का बच्चा बन सबर कर. तो इमाम गजाली की वो है कि भाई इंसान की दो मसले, तमाम मसाइल का दो हल है, मसले की दो बुनियादें, एक ये कि तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है. तो किसी ने कहा कि भाई इमाम गजाली से भाई ये बताएं कि पता नहीं चलता कि आजाब है या आजमाइश है, तो साहिब ने भी पता चला आजाब में मुब्तला रहे वो आसाइश आजमाइश भी और आजमाइश में मुब्तला तो समझते रहे आजाद. तो उन्होंने कहा देखो भाई जो तकलीफ तुम्हें खुदा के करीब से करीब तर कर देगा वो तुम्हारे पे आजमाइश है, और खुदा से दूर कर दे या खुदा को भुला दे वो आजाब है. तो अब तुम देख लो, तो बोल रहे कि अगर एक आदमी को उस पर तकलीफ आई और वो तो वो बहुत खुदा ने कभी फिरौन को कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं।
इसका मतलब ये है कि वो हजारी इन अदर वर्ड्स उस आसाइश को भी तकलीफ कह रहे हैं कि जो खुदा से दूर कर दे,
वो क्या है
आसाइशें भी होती हैं जो खुदा से दूर ले जाती है।
वो हाँ मतलब ये कि आजाब
है,
वो आजाब
इसको अलग से डिफाइन कर,
वो आजाब है। एक आजाब में तुम मुब्तला, उसे तुम समझ रहे हो खुदा की बड़ी रहमत, खुदा की बड़ी रहमत, खुदा की बड़ी रहमत है मेरे ऊपर। मैंने जो है वो 5 लाख रुपए की गाय काटी, 5 लाख रुपए की गाय कुर्बानी की, ये अल्लाह का फजल मेरे पे है। तो अल्लाह का फजल तुमने 5 लाख रुपए, और फिर खुद ही बता रहे हैं फोन पे चर्बी बहुत थी, वाह भाई चर्बी बहुत थी। मैंने कहा यार चर्बी तो होगी, तुम कई गाय ले लेते, बहुत सारी गाय ले लेते, बहुत सारे लोगों में काट के बांटते, तो ये तुमने 5 लाख रुपए फजूल जाया कर दी। बोले नहीं, वो अल्लाह की राह में बेहतरीन चीज कुर्बान कर, बेहतरीन चीज कुर्बान की, और चर्बी सब चर्बी थी।
सर ये जो अकील करीम के लिए 4 करोड़ की कुर्बानी की है सर, और स्टॉक एक्सचेंज में लोगों के कपड़े उतारे, छोटे लोगों के।
तो बताने का मतलब ये है कि जब हम किसी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, उस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को हम ये देखते हैं कि ये किसी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के नतीजे में पैदा हो रहा है, तो हमें ये देखना होता है कि इस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के नतीजे में ये इंस्टीट्यूशन पैदा हो गया। अब ये जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूशन है, उस किस्म का निजाम जिंदगी अगर होगा तो वो हल पेश करता रहेगा, लेकिन अगर वो निजाम जिंदगी कोई और होगा तो फिर तो हल नहीं पेश कर सकता। आप कितने नेक आदमी को लें, अगर एक ऐसे वो माशरे के अंदर वो रह रहा है जो कि वो क्या कर सकता है, वो अबू शामिल है ना, शामिल साहब जसारत में तो वो आए हुए थे, उनके बेटे ने फिलोसफी में एडमिशन दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा मेरा एक दोस्त है जो बलोच है, और बलोच सरदार है, और दोनों क्लास फेलो रहे हैं ये, तो वो जो है वो हज पे चला गया, अपने इलाके का सरदार भी हज पे चला गया। वो कहता है मुझे सिर्फ है ना एक दुआ बढ़नी आती है, इन्ना आते ही ना अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना आते ही ना दुरूद शरीफ, यानी कि उनके मौलाना साहब जो उनके अब्बा ने उनके ऊपर मुसद्दत किए थे, उन्होंने उनको नमाज पढ़ने की ये बताया। तो उन्होंने कहा भाई दूसरी आयत कुल हुवल्लाह मैं कभी कभार भूल जाता हूँ, ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैं हर नमाज में इन्ना आते ही ना ये पढ़ लेता हूँ। जो सरदार है नमाज पढ़ना जरूरी होता है, नमाज पढ़ता है। तो रिलीजियस उसका बैकग्राउंड रहा, उसका बाप बड़ा नेक आदमी था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो कोई बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह का वो भी रहा यूनिवर्सिटी में, उसके बाद वो हज पे चला गया। मैं हज पे गया तो उन्होंने कहा भाई ये दुआ है, ये दुआ है, ये तुम पढ़ लो, ये पढ़ लो। मैंने कहा भाई मैं कोई दुआ मैंने याद नहीं की, मैं बस यही देखता रहा कि किस कदम का मरमर लगा हुआ है, संगे मरमर किस कदम का कपड़ा लगा हुआ है, तब आप में यही करता रहा, मैं बताता रहा, और मैं हज वज करके आ गया। जब हज करके मैं आ गया और दावत वावत हुई, तो उन्होंने एक औरत आई उसके पास, सरदार के पास, उन्होंने देखो अल्लाह के घर से आप होके आ गए और हमारी बच्ची बीमार है, और बच्ची को जो है वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हम ले आए इमरान खान जी को हॉस्पिटल ले गए थे, बच्ची को जवाब दे दिया डॉक्टर ने, तो उसको खाना हलक से नीचे नहीं करना, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे वो है। तो उन्होंने कहा भाई जो है ना वो बहुत, अब तो वो बिल्कुल बेहोश है, तो आप है ना उस पर दम फूक दो, आपको अल्लाह घर से कभी मैं सरदार, अब मैं कहूँ कि अल्लाह घर से मैं क्या, मैं सही तरह आज भी नहीं गया, मैं नमाज नहीं गया, अब ये मैं कैसे बोलूँ इसको। उनका देखो भाई अल्लाह से, उसने कहा देखो भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ और जो भी करना है जो करना है, और मैं अगर ये बच्ची ठीक नहीं हुई सरदार की वाली छोड़ के मैं चले जाऊंगा। तो वो गए कपड़े वपड़े उसके बाद उन्होंने बच्ची को फूका और उन्होंने कहा कि आप है ना यहीं बैठे। तो वो बैठा, खाना वाना वो जो उनकी रिवायत होती है खाना वाना खिलाया उसको, जो भी उनके पास गरीब लोग थे खाना वाना उसने खाया। उसके बाद गुड़ की पोटली ले जाई, बोले भाई वो जो है ना उस आंख खोलिए बच्ची ने, हम कह रहे थे आप अल्लाह के घर से आए हो, तो जो है बच्ची ने आंख खोल दी है और बच्ची ने आज दूध पिया है और अभी तक उल्टी नहीं हुई। तो आप ऐसा करो, गुड़ पे जो है ना, हम बाबा ने कहा है गुड़ के ऊपर गुड़ खिलाना है इसको, तो गुड़ पे आप फूंक दो। कह रहा है मैं गुड़ पे भी पड़ के फूका, इन्ना आता ही नहीं, इन्ना आता ही नहीं, पड़ के उन्होंने फूकी और अपना आगे। वो कह रहा है भाव, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ 20-22 साल पहले की बात, 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तक के वो यही कर रहा है और थूक मारता है ठीक हो जाते लोग, सही है ना, और कुछ नहीं उसका। लेकिन वो अपने लोगों से यही, जिस तरह हमारे यहाँ बताते हैं सरदार का काम होता है लोगों की बेटियों को उठाना, कोड़े मारना, लोगों को जलाना, कत्ल करना, ऐसा है सरदारों से लोग मोहब्बत भी करते हैं। सारे सरदार ऐसे नहीं होते कि लोगों को अपने घोड़ों, वो सरदार है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं और वो फूक मारता है और लोग ठीक हो जाते। तो बताने का मतलब ये कि अगर फर्ज किया कि आप ये कहें कि आपका ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के अंदर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स नहीं है, वो आ गए, ठीक है आ गए, अब तो आ ही गए, आपके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में भी ये चीज शामिल हुई, अब आप सारी उम्मीद इसी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर से रखें और आप कहें नहीं कोई दूसरा मैकेनिज्म, भाई इट्स नॉट वर्किंग, वाई डोंट वी रियलाइज इट्स नॉट वर्किंग। जो दिमाग इन इदारों ने पैदा किए और जो जिस्म इन इदारों ने पैदा किए ठीक नहीं है वो, जो आपकी मेडिकल साइंस ने जो जिस्म तैयार किया वो कमजोर है ना, और जो माशरत ने आप जो दिमाग पैदा किया वो कमजोर दिमाग है ना, आपने कोई बड़ा आदमी पैदा किया ना, आपने कोई मजबूत आदमी पैदा किया ना, आपने कोई मजबूत जनरेशन पैदा की, इट्स टोटली फेलियर। व्हाई डोंट यू गो फॉर अदर ऑल्टरनेटिव, व्हाई नॉट, इसलिए कि कंसीलेबल ही नहीं।
एक क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला सवाल तो ये है कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस, आखिर हर्ज क्या है, अगर सोच को, अगर पोटेंशियल्स को, अगर एनर्जीज को, अगर ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एक शक्ल दे दी जाए, एक रो दे दी जाए, डिसिप्लिन कर दिया जाए, इधारा यही करता है ना, डिसिप्लिन कर देता, ऑर्डर दे देता, तो क्या प्रॉब्लम है एक एक अच्छा और एक ज्यादा प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल, जो कि कैपिटलिस्टिक स्लूगन है कि एक ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमन कैपिटल में। तो पहला सवाल तो ये है कि तो खर्च क्या है, दूसरी बात ये है कि अभी जैसे आपने कहा कि वो जहन पैदा नहीं किए, वो आई एम नॉट अ कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, मगर अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर देखें, हम इन इदारों को मिटा दें और इनकी जगह एक रिलीजियस ऑर्डर ले आए, इस बात की क्या गारंटी है कि सस्टेन करेगा, फॉर हाउ लॉन्ग विल अ रिलीजन रिलीजियस पैराडाइम कैन सस्टेन एंड कैन ब्रिंग अ स्टेबिलिटी ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, कि इखलाकी तौर पर उन लोगों को उठाए और फिर उठाए रखे, यानी आम समाज से बुलंद कर दे और फिर बुलंद रखे, मतलब कब तक ऐसा होगा। देखिए कहते हैं ना बेहतरीन दौर जो है सरवरे कायनात का दौर था,
सही है।
तो इस
देखो पहले तो ये कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, लोग ये समझते हैं कि कैपिटलिज्म के अंदर यू ओन कैपिटल, दिस इज नॉट ट्रू, इट्स द कैपिटल हु ओन्स यू, सरमाया को आप ओन नहीं करते, सरमाया आपको ओन करता है, ये है प्रॉब्लम। इंसान शैतान बन जाता है, इंसान इंसान नहीं रहता, इंसान अपनी पूरा जो ऑर्डर इख्तियार करता है वो ऑर्डर ऑफ द कैपिटल होता है, तो ऑर्डर ऑफ द कैपिटल को जब तुम इख्तियार करते हो तो यह मुमकिन ही नहीं है कि तुम कोई रिलीजियस माशरा बना सको, मुमकिन नहीं है ना, मुमकिन है कि सरमायादारी के अंदर कोई भी रिलीजियस ऑर्डर तुम इस्टेब्लिश कर सको, बिकॉज इट इज द ऑर्डर ऑफ द कैपिटल, इट इज द ऑर्डर ऑफ द कैपिटल एंड इट इज नॉट यू हु ओन्स कैपिटल, इट इज द कैपिटल हु ओन्स यू। उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हम तफसीली दे सकते हैं कि किस तरीके से आप सरमाए को ओन नहीं करते, सरमाया आप ओन, आज जॉन स्टॉक मार्केट में किसमें सरमाया लगाएंगे इसका फैसला आप करते हैं, या सरमाए की बढ़ोतरी का अमल आपको बताता है कि कौन सा स्टॉक आपको खरीदना है, कौन सा डॉलर खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, इसका फैसला ज्वाइंट स्टॉक मार्केट में आप करते हो या मूवमेंट और द डायनेमिक्स ऑफ द कैपिटल डिटरमाइन करता है. तो डायनेमिक्स ऑफ द कैपिटल डिटरमाइन दैट वेदर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट और यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, पहली बात. दूसरी बात ये कि सरमाया दाराना निजाम की जो दावत होती है वो होती है आजादी, कि आप जब सरमायादाराना निजाम को इख्तियार करेंगे तो उसके नतीजे में आजादी में इजाफा होगा. तो आजादी का मतलब तो यही होता है कि इंसान जो चाहना चाहे चाहे, लेकिन सरमायादाराना निजाम में इंसान की सिर्फ एक चाहत होती है सरमाया. सरमाए के अलावा कुछ और नहीं चाह सकता, क्योंकि मेरी हर चाहत सरमाए के जरिए ही मुमकिन होती है. सरमायादाराना माशरत के अंदर आई कैन नॉट डिजायर एनीथिंग अदर देन कैपिटल. If I am desiring anything other than capital, I cannot realize my desire other than capital. So the only legitimate desire, which is the most desirable desire in capitalist society, is the desire of the capital. Why? Because it's the capital which is the concrete form of freedom. So azadi mumkin hi nahi hai bagair sarmaye ke. तो जब हम आजादी की दावत देंगे तो सरमायादारी की दावत देंगे. ये मुमकिन ही नहीं है कि आजादी की तो आप दावत दे रहे हो और सरमायादारी की आप नफी कर दो, ऐसा नहीं हो सकता. जिन्होंने की अनसक्सेसफुल रहे. तीसरी बात ये कि फर्ज किया कि हम इस्लामी निजाम के कयाम की जिद्दोजहद करते हैं और इस्लामी निजाम जो होगा वो बेहतर होगा इस निजाम जिंदगी से किस बुनियाद पर, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. हमारी जो मजहबी तहरीकें हैं वो बुनियादी तौर पर जो पोजीशन लेती हैं वो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट पोजीशन ही लेते हैं. वो उसूली बुनियाद पर थोड़ी कोई कहती है, वो कहती है कि इसके नतीजे में गुर्बत खत्म हो जाएगी. मुसलमानों का भी गुर्बत खत्म हुई है. जो कौन सा मुझे बताए कोई बड़ा खलीफा जो मुसलमानों का गरीब ना रहा हो,
सारे पैगंबर
है. और एक आखिरी जो औरंगजेब था वो तक गरीब था, नहीं था उसके पास कुछ. अच्छा, यानी कि उसको इतना कंडेम किया है हिंदुओं ने, लेकिन एक बात वो एक्नॉलेज कर, कुछ नहीं छोड़ा उसने अपनी औलाद के लिए, एक पाई नहीं थी उसके पास. नासिरुद्दीन महमूद, एक पैसा नहीं था उसके पास देने को. तो बताने का मतलब ये, तो ये तो पहले दिन से आप सैकड़ों में, ये नूरुद्दीन रंगी जो था जिसने बहुत ही टफ टाइम दिया है शुरू में, वो जिस खेमे में रहता था उसी खेमे में दफन हुआ. खेमे में रहा वो पूरी जिंदगी, खेमे के अंदर पूरी जिंदगी, यानी कि बादशाह था वो. और टफ टाइम दिया उसने, और उसकी बीवी ने एक दिन जैतून में खाना पका दिया, उसने कहा भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तुमने क्यों किया फजूल खर्ची. बादशाह, और मामूली बादशाह नहीं था वो. मसला ये है कि पहली बात तो ये है कि आप मजहबी जमातें गए गरीब लोगों से जाकर उल्लू बनाए कि देखो तुम लोग जब हमें वोट दोगे तो तुम्हारे घर में सब घर के गटर की नालियां वालियां ठीक हो जाएंगी फर्स्ट क्लास, और पानी आएगा और सब लोगों को नौकरी मिलेगी सब. इसका मतलब है कि आप ये समझ रहे हैं कि ये जो जिस निजाम जिंदगी में जो तुम्हारी ख्वाहिशात पैदा हो गई है वो ख्वाहिशात तो नेचुरल है, ये हुआ ना इसका मतलब. ख्वाहिशात तो नेचुरल है, यानी कि हर आदमी चाहता है खूब खाना खाता रहे, खूब पानी खर्च करता रहे और गाड़ी में घूमे. ये डिजायर जो निजाम जिंदगी पर, ये तो डिजायर ए हिस्टोरिकल, ए नेचुरल, ए कल्चरल डिजायर है. लिहाजा ये निजाम जिंदगी पूरा नहीं कर सकता. असल में तुम्हें मार इसलिए पड़े तुमने इस्लाम को छोड़ दिया. इस्लाम को अगर तुम इख्तियार कर लो तो बेशुमार बेहतरीन सब लोगों को खाने को मिलेगा, सब ये दुनिया जन्नत बन जाएगी. तो इसका मतलब यह है कि डिजायर जिस निजाम जिंदगी से पैदा हो रही है वो तो डिजायर नेचुरल है. लिहाजा जब आप कोई उनसे कुर्बानी मांग, एक ऐसी जहनीयत से तुम कुर्बानी की तवक्को कैसे कर सकते हो जिससे तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सारी डिजायर बिल्कुल जायज है. तुम्हारी ये डिजायर कि तुम बहुत खाओ, तुम्हारी डिजायर कि तुम्हारे पास लैंड क्रूजर हो, तुम्हारी ये डिजायर कि तुम वो जो है, तो उसको जब आप कुर्बानी की बात कहोगे तो उसे फौरन घोड़े की पीठ याद आ जाएगी ना, फौरन ऊंट की पीठ याद आएगी ना. हेलो जी, तो बुनियादी तौर पर जब हम किसी भी फ्रेमवर्क को देखते हैं वो फ्रेमवर्क इस कंडीशन पर खड़ा नहीं होता कि आपने क्या उस सिस्टम के अंदर हल पेश किए। सवाल ये है कि उस सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स सोल्यूशन। आप कहते हैं भाई ये हमारे मसले हैं, लियारी में पानी नहीं आ रहा, मजहबी जमात उसका हल पेश करेगी, इस्लाम उसका हल पेश करेगा। इस्लाम कहे तू क्यों आया भैया, क्या करने के लिए आया यहाँ पर? बोले नहीं मैं अब क्या मैं रहूं शहर में। अर्बनाइजेशन और रूरल अर्बन डिस्टिंक्शन को इस्लाम का पैदा करता प्रॉब्लम, मॉडर्नाइजेशन का प्रॉब्लम है ना भाई, कि तुम पूरे माशरे से निचोड़ कर रिसोर्सेज जमा कर दो एक जगह पर, और फिर कुछ लोग जो है बहुत ही छोटी माइनॉरिटी है जो उस पर अय्याशी की इंतहा कर दे और दूसरे उसको देखते हैं
और उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर,
उस तक पहुंचने की कोशिश कर, और फिर आपको इल्यूजन ये दे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लियारी का रहने वाला बच्चा और डिफेंस का रहने वाला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये है ना इंस्टीट्यूशन। इस्लाम ने कहा था ये करने को, इस्लाम ने कहा था कि तुम एक माइनॉरिटी को मुसल्लत कर दो, वो दुर्वे बदमाशियां कर रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, लूट रहे हैं, माल खा रहे हैं, उनके तर्ज जिंदगी को पेश करो, आइडियलाइज करो। आपसे कह रहा प्रॉफिट के खाने के बाद छिलके नहीं फेंको बाहर अगर नहीं दे सकते अपने पड़ोसियों। आप पूरी दुनिया में टीवी पर इश्तिहार चला रहे हो उसकी जिंदगी का, और आप कह रहे हो लोग किनात करेंगे, लोग किनात करेंगे, गरीब आदमी किनात कर सकता है? बच्चे एक आदमी के पास खाने को खाना नहीं है। आप रमजानों के अंदर जितने प्रोग्राम थे खाने के प्रोग्राम, ये बना लें ब्रोस्ट बना लें ये बना, अब उसके पास रोटी नहीं है, रोटी के लिए लाइनें लगा रहा है, तुम टीवी पे प्रोग्राम दिखा रहे हो, उसके बच्चे पे क्या गुजर रही होगी? उसने रमजान का मतलब होता है बहुत सारा खाते रहना, रमजान के अंदर मतलब ये होता है मजे एंकर पर्सन ये पूरा संजीदा, वो मजहबी आदमी भी ये आके कह रहे हैं हाँ जी ये तो खाते हैं पकोड़े ये फला ठीक है ये खाना चाहिए, मैं ये खाता हूँ वो खाता हूँ, सेलिब्रिटी बन गया। नहीं कुछ नहीं खाता मैं तो बिल्कुल नहीं खाता, नहीं खाना चाहिए
कोई, आप ऐसा नहीं है टीवी
दिखा रहे हो, टीवी पूरे माशरे को दिखा रहे हो खाना ये होता है। खाना देखते रहे, मेरा छोटा बेटा है ना वो खाने पीने का बहुत शौक है, वो कंडेम करता माँ, मेरी बीवी ने कहा मैं गोश्त खाने का शौकीन हूँ, तो कहती बस ये ज्यादा दिन ही एक दिन तो वो मेरे साथ मिल जाता है सबसे छोटा वाला, वो कहता है देखें इस तरह होता है खाना, मुझे हर चीज निजाम बहुत सारी डिशें लगी होती है बहुत सारे खाने, मुझे हमारे यहाँ तो एक ही होता है, ये क्या छोटा है अभी वो 2.5 साल का 3 साल का, वो क्या कंडेम करता है माँ को, ये होता है दस्तरखान जिसको खूब खाने को मिल रहा है वो, तो ये गरीब का बच्चा जो बेचारा बैठा हुआ है वो क्या सोच रहा होगा? अब आप कहेंगे भाई ऐसे माशरे के अंदर स्नैचिंग नहीं होगी, सब लोग शरीफ हो जाएंगे, क्यों नहीं होगी भाई स्नैचिंग? कैसे नहीं होगी स्नैचिंग? स्नैचिंग करेगा वो, उसको पता चल गया कदर का मतलब ये होता है, कदर का मतलब ये होता है कि इस तरह के तर्ज जिंदगी इख्तियार किया जाए। तो बताने का मतलब ये कि जो आप प्रॉब्लम्स आपने पैदा किए वो मॉडर्न सोसाइटी के प्रॉब्लम है, वो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन उसको रिजॉल्व करते हैं। तो आप कहते हैं मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ने देखे इसको हल कर दिया, ओ भाई पैदा भी तो उसने किया था, तो तुम सोर्स को काटो ना, सोर्स को काटो जिससे पैदा हो रहा है, उसको तो तुम काट ही नहीं रहे हो। तुम ये कह रहे हो भाई ये हो गया, अच्छा चले अब ये लगा
दे आर सेइंग बेनिफिट्स आर मोर देन द More than what they are losing.
हकीकत ये है जो कि मॉडर्निज्म को जानते हैं और जो पहचानते हैं और जिन्होंने उसको थियोरेटिकली पढ़ा वो कहते हैं उसके नुकसान अनइमेजिनेबल है, कंसीवेबल नहीं है, इतने हॉरिफाइंग उसके नतीजे कि आप कंसीव ही नहीं कर सकते। हम जब मैं इंग्लैंड गया तो जिस इलाके में मैं ठहरा था वेटफोर्ड उसमें वो नहीं थे, इस तरह के झोपड़ी टाइप के घर थे, सारे गोरों का इलाका था वो, तो वो मैंने कहा यार ये तो बड़ा कदावत पसंद इलाका है, तो मेरे दोस्त ने कहा मैं इसे लेके चलूंगा स्काई स्केपर जिस तरफ है, वो अभी कॉन्फ्रेंस में मसरूफ था, तो जब वो भी कॉन्फ्रेंस हो फिर मुझे वो लेके गया जो शहर है, जैसे उनका शहर है स्काई स्कैपर, तो वहां पर तो मैंने कहा यार मैं समझ रहा था ये बड़ा अंडर डेवलप है, तो बड़ा तो उन्होंने कहा बस ये शीशे ही है बस, यहाँ जो गोरा था ना हमारे साथ उसका दोस्त था जो वही, वो उसकी बहन किसी बहुत ही रिच इलाके के अंदर एक कनाल का उसके पास घर था, वो अकेली उसमें रहती थी, और वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो बॉक्स रूम्स होते हैं ना उसमें शेयर करता था मेरे दोस्त का कमरा, दोनों एक ही कमरे में रहते थे, वो पढ़ रहा था एलएसी में। तो मैंने उससे कहा यार तुम बोलना कहा कि ये मेरी बहन जो है वो दो मैंने कहा तुम अपनी बहन के साथ क्यों नहीं रहते, तो बोलने का वो उसकी प्राइवेसी थ्रेटन होती है। तो मैंने कहा तुम जो इसके साथ बॉक्स रूम में रह रहे हो तुम्हारी प्राइवेसी, मेरी मजबूरी है जब मुझे मौका मिलेगा तो उस कमरे में जिसमें वो मेरा दोस्त था वो रह रहे थे, इतने बड़े बड़े चूहे थे, यानी वो ऊपर था मैं और ये नीचे थे, इतना बड़ा बेड था उसमें हम दोनों लेटे थे, तो बेड के नीचे कुछ लगा, मैंने कहा यार मैं नीचे जाके मैंने कहा यार इसमें बिल्ली है कमरे, बोले बिल्ली है नहीं, उसने ऊपर वाले ने कहा इट्स नॉट कैट इट्स रैट। तो बताने का मतलब ये कि वो रह रहा है ना वहां पे, उसने कहा कि भाई ये बस ये देखने की है, लाइफ जो है वो तो हेल है, हेल जिंदगी जहन्नुमी है। तो वो मसला ये है कि आप अगर तरक्की को अभी भी पाकिस्तान के तराने में बिल्डिंग से दिखाते रहें करके तो लोग समझें कि जिंदगी भी इसमें खूबसूरत ही होती होगी, तो सब ये तो देखने का तरीका है। तो मॉडर्निज्म की जो सॉल्यूशंस हैं उनके अगर प्रॉब्लम्स हैं उनके रेजोल्यूशन या सॉल्यूशन अगर मॉडर्न लाइफस्टाइल से निकल रहे हैं, नंबर वन एडहॉकिज्म पर बेस करते हैं वो एडहॉक, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास तो कोई चॉइस नहीं है, आपके पास तो चॉइस है ना, अभी इसको जड़ पकड़े थे कितना अर्सा गुजरा है, आपके पास तो बड़ा स्ट्रांग बुनियाद है। पहली बात तो ये कि वो हर जगह पर मॉडर्नाइज नहीं हुए, वो इंस्टीट्यूशन में डेवलप नहीं हुए, आप कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म सोच ही नहीं, आपका जो बड़ा आदमी है वो तो जाके इन इंस्टीट्यूशन में बैठ जाता, उसका दिमाग काम ही नहीं करता, आपका जो जहीन आदमी है वो तो लम्स जा रहा है, आपका जहीन आदमी तो आईबीए जा रहा है, आपका जहीन आदमी तो हार्वर्ड जा रहा है, MIT जा रहा है, वहां जा रहा है ना आपका जहीन आदमी,
और फिर वो निजारों से निकलने के बाद 9 to 9 की जॉब करता है, उसके अंदर वो इंस्टीट्यूशन वो कॉर्पोरेट कल्चर तो उसका सारा जूस निकाल लेता है। इधर आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आए, क्या मजहबी मुआशरा जो है वो
मजहबी माशरा
आने के बाद उसको वहां
देखें
रख पाता है कितना, फॉर हाउ लॉन्ग विल इट्स मीन।
देखें मैं एक बात बताऊं, मसला ये होता है कि माशरा दुनिया के अंदर कोई भी माशरा मोनोलैथिक नहीं होता, मोनोलैथिक का मतलब ये कि सब लोग एक तरह से सोचते हों, और उस मल्टी फेसेट होता है, उसमें बहुत सारी ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेंड होता है जिसको आप उस माशरे का रिप्रेजेंटेटिव थॉट या रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर या रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के तौर पे पेश करते हैं, लेकिन ये उसके अलावा दूसरे भी मौजूद होते हैं उसी माशरे के अंदर।
क्या ये डेमोक्रेटिक टच है?
नहीं
रिप्रेजेंटेटिव से
नहीं रिप्रेजेंटेटिव
नहीं,
जैसे फर्क किया कि हम कराची को अगर लेंगे तो हम ये कहेंगे भाई कराची एक अर्बन सेंटर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यू नो व्हाट आई मीन, कॉन्ट्रैक्टेरियन सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गए हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इस तरह से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ना, लेकिन ये कि ये पूरे कराची को तो एक्सप्लेन नहीं करेगा, जाहिर है उसके कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन कर देगा। इसी तरीके से इस्लामिक सोसाइटी अगर कहीं पर डेवलप हो जाए तो पहले ये समझा जाता था कि माशरा वो होता है जो कॉन्फ्लिक्ट फ्री जो स्टेट ऑफ लाइफ होती है या स्टेट ऑफ इंटरेक्शन होता है, वो आइडियल स्टेट ऑफ इंटरेक्शन होता है। आजकल सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं क्राइसिस रिडन और कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग रिडन सिस्टम ही असल में माशरे होते हैं, माशरा होता ही वो है जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिडन हो, इन्हें हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट सोशियोलॉजी, यानी कि 2000 के नीट की जो रिप्रेजेंटेटिव सोशियोलॉजिकल थॉट है उसमें एक अहम स्कूल ऑफ थॉट है, कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट हम इनको कहते हैं, जो कहते हैं माशरा होता ही वो है जो कि कॉन्फ्लिक्ट एम्बेडेड हो, वही नमू पाता है, वही ग्रोथ करता है। देखिए मसला ये नहीं होता कि हम जब एक उम्र देखते हैं किसी माशरे की तो वो उम्र किसके तनाजुर में देख रहे हैं, आप अपनी उम्र के तनाजुर में देख रहे हैं या उम्र का तो एक ही तनाजुर होता है आपकी उम्र। जाहिर है जब आप मर गए तो माशरा बाहर में जाए, आप तो मर गए, आप तो मर ही जाओगे। तो जब हम किसी ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब हम इस तरह देखते हैं कि वो जैसे हमें हमेशा रहना है, वो इसका कॉल है शोपेनहावर का या आई डोंट नो नीचे का कि लिव ड्रीम एज इफ यू विल लिव फॉर एवर एंड लिव एज इफ यू विल डाई टुमारो। ख्वाब ऐसा देखो कि तुम्हें हमेशा जिंदा रहे और जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे आज ही तुम्हारा इंतकाल हो जाना है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब हम एक इस्लामी माशरे के कयाम की कोशिश करते हैं तो जाहिर है वो तकनीक कब आएगा, बनेगा नहीं बनेगा, सवाल ये नहीं है कि वो कायम हो जाएगा उसके बाद फिर क्या, मेरी 50 साल की जिंदगी में तो मैं खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद फिर उस माशरे का क्या होता है क्या नहीं होता, माशरे के लोग क्या है क्या नहीं। देखिए मसला ये होता है कि मजहबी जो तहरीक होती है उसके बारे में ये समझा जाता था कि 19वीं सदी के बाद ये खत्म हो गई, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की गुंजाइश नहीं है मजहब के अंदर अब किसी भी दुनिया के मजहब के अंदर। लेकिन ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद पूरा चेंज हो गया सिनेरियो, हो गई तो बड़ा खतरनाक है, तो इनकलाब इन्होंने बर्पा कर दिया और ये कि बादशाह को पूरा उलट के रख दिया इन्होंने, तो यानी कि ये डेंजरस। तो रिलीजन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी बात ये होती है कि मॉडर्न सोसाइटीज के पीछे जो कुव्वत होती है वो उसके इदारों की कुव्वत होती है, इस्लामी माशरों के पीछे जो कुव्वत होती है वो खुदा की कुव्वत होती है। खुदा मौजूद है, अगर इस पे हमारा यकीन है तो हमें कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद वो नहीं कायम कर सके और ये एक मुस्तकिल और मुसलसल काम है। The establishment of society, दुनिया में कोई भी तहजीब हो वो एक्ट नहीं होता, इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। क्या मॉडर्न सोसाइटी एक इवेंट है? ये तो एक प्रोसेस है, पहले वो हाफ क्रिश्चियन हाफ मॉडर्न सोसाइटी थी, फिर वो मोर मॉडर्न 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 अल्ट्रा मॉडर्न फिर पोस्ट मॉडर्न, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो एक थोड़ी है शक्ल के अंदर, वो तो मुस्तकिल और मुसलसल एक प्रोसेस के अंदर है। तो वो कौन सी सस्टेनेबल है कि आप इस्लाम के अंदर, लेकिन इस्लाम ही माशरा जब कभी कायम होगा तो उसमें असल में इंसान जो असेस किए जाएंगे वो अपनी इंफरादी जिंदगी की बुनियाद पर असेस किए जाएंगे, माशरे का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। माशरे का थोड़ी होगा पूरा माशरे, जाहिर है पूरा माशरे का हो तो डेफिनेटली जहन्नुम में चला जाएगा, लेकिन अगर अफराद का हो तो बहुत सारे जन्नत में चले जाएंगे। तो माशरा तो कोई चीज नहीं होता, इट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो इंडिविजुअल ही करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको कायम करना है माशरे के अंदर बहुत सारी चीजें, इसकी बुनियाद पर आप अपनी माशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई इग्नोर नहीं कर सकते।
उसके अलावा दूसरी बात है, मतलब ये कह रहे बहुत सारे माशरे मतलब ऐसे हैं कि जहां पर अब भी जो मतलब मजहबी रिवायात बहुत मजबूत है, यानी वहां पे देहातों और गांव में झूठ बोलने का कोई तस्वुर नहीं अब भी है। मतलब हम तो इस तनाजुर में कहते हैं कि जो कुछ कराची में हो रहा है तो ये पाकिस्तान के तमाम माशरों की अक्कासी कराची की अखलाकी जिंदगी करती है। हालांकि शहर जो होते हैं वो हिलाजत में सबसे मतलब आला मकाम पर होते हैं, कराची क्योंकि पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन में सबसे आगे है, यार सबसे ज्यादा मॉडल सबसे ज्यादा दलील इंसान इस शहर में मिलता है। मतलब लेकिन अगर आप उन मतलब एरियाज में चले जाए थरपारगर में, वहां तो झूठ बोलने का कोई तस्वुर ही नहीं है। मतलब आज भी जो है इस सदी
पकड़ लिया अगर किसी को
तो हाउ विल यू कन्विंस अ मॉडर्न सोसाइटी इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ द लूप होल्स द मॉडर्न सोसाइटी हैज और ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नेक्स्ट डे यू आर आई मीन शोइंग टू दैट।
देखो पहली बात तो ये कि वो लोग मॉडर्निज्म को क्या पूरा जानते हैं, क्या मॉडर्निज्म की इल्मियत जानते हैं? अगर ठीक है इस्लाम की इल्मियत नहीं जानते, क्या मॉडर्निज्म की इल्मियत, मॉडर्निज्म को जो डिफेंड करना है बिल्कुल मॉडर्निज्म की इल्मियत, तुम जब चाहो कर लो। तो अगर आप कोई कुरान की आयत पढ़ते हैं या हदीस का तो फौरन कह देता है ना मॉडर्निस्ट, ओ ये हदीस तो वो है, कमजोर हदीस है फौरन बन जाते हैं. वो तो मॉडर्निज्म की जब डिफेंस देता तो उसकी धज्जियां क्यों नहीं बिगड़ते
हमारे पास तो
है उसकी धज्जियां बिगड़ो उसको उसका ईमान मुतजल करो ना. वो आपका ईमान मुतजल कर रहा है उसका ईमान जिसके ऊपर खड़ा हुआ है वो तुम्हारा ईमान जिसके ऊपर उसके 1500 साल की तारीख है. एक एक आदमी तुम पेश कर सकते हो उसके मुकाबले बताओ ना कौन मॉडर्न आदमी पेश करते हो इस आदमी के मुकाबले पे तुम एक आदमी बताओ इसके इस आदमी के मुकाबले पे तुम पेश करके दिखाओ. किसी तहजीब के अंदर पैदा होने वाले इंसान जो मॉडर्न लोग पैदा हुए हैं बताओ ना इसके मुकाबले का आदमी कि जो तुम सैकड़ों आदमी पेश कर सकते जो लोग बिल्कुल आम आदमी थे. हजरत उमर का कॉल है कि अगर सब लोग दो ही पोजीशन एक खुदा ने फैसला किया कि सब लोग जहन्नुम में जाएंगे सिवाय एक आदमी के तो मैं उनमें मैं मेरा क्या होगा मैं डेफिनेटली उन लोगों में शामिल होऊंगा जो कि जहन्नुम में जाने वाला होगा. मैं अकेला वो आदमी नहीं हो सकता जो जन्नत में जाऊँ. और अगर खुदा ने फैसला किया सब लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय एक आदमी के तो शायद वो एक आदमी नहीं हो. ये खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे हैं एक उसकी जो अपनी सेल्फ असेसमेंट का लेवल ये है कि सब लोगों को जन्नत में डाला जा रहा हो और खुदा कह रहे बस एक ही आदमी जन्नत में नहीं जाएगा तो वो कौन हो सकता है कहीं वो मैं ही होगा. तो ये सेल्फ असेसमेंट का लेवल होता है हेड ऑफ द स्टेट का. हेड ऑफ द स्टेट का ऐसा हेड ऑफ द स्टेट का जिसको यहूदियों ने और क्रिश्चियन ने बगैर जंग लड़े चाबियां हवाले कर दी. उन्होंने कहा हमारे पास एक ऐसी दलीलें मौजूद हैं और ऐसी एक्सप्लेनेशन है डिस्क्रिप्शन है एक आदमी की जो ना क्रिश्चियन होगा ना ज्यू होगा लेकिन उस वक्त का बेहतरीन आदमी होगा. और अगर वो हेड ऑफ द स्टेट की हैसियत से चाबियां मांगे तो चाबियां उसके हवाले कर. खालिद बिन वलीद को आगे किया उबैदा बिन जर्रा ने उन्होंने कहा ये उस जैसा तो है लेकिन ये वो नहीं है. तो बताने का मतलब वो आदमी कह रहा है कि सब लोग जन्नत में जा रहे होंगे जिसको छोड़ दिया जाएगा शायद वो मैं ही हूं. तो आप जब किसी हिस्टोरिकल प्रोसेस का एनालिसिस करते हैं तो आपके सामने दलायल पेश करते हैं ना. आप कहें भाई ये मॉडर्नाइजेशन की तुम दलील फराहम कर रहे हो मॉडर्नाइजेशन के पीछे क्या दलील है तुम्हारे पास सिवाय इसके कि इसके नतीजे में तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो गई. तो क्या वाकई तुम्हारी जिंदगी आसान हो गई या नहीं हुई. क्या वाकई इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के नतीजे में तुमने इंसानों को ज्यादा वक्त दिया या नहीं. क्या इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके तुम हाल से ज्यादा जुड़े या मुस्तकबिल में खो गए. क्या इसके नतीजे में तुम्हारे माशरे के अंदर जहनी अमराज कम हो गए या कौन से वो इंडिकेटर हैं तुम्हारे पास किसी तहजीबी अमल को जांचने और परखने उसी पे परख लो ना भाई इसको. तो वो तो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हारा ईमान है कि अभी मुकम्मल मॉडर्नाइजेशन नहीं. अब आप जो लोग जो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस अगर कंटिन्यू करे तो उसके नच में अच्छे लोग आते हैं. बताए ना कहां दुनिया में किस जगह पर अच्छा आदमी आ गया अपने पिछले जमाने से. बुश जो था वो अच्छा आदमी था क्लिंटन के मुकाबले. जॉर्ज डब्ल्यू बुश इंटेलेक्चुअली एकेडेमिकली सोशली मॉरली उससे बेहतर आदमी था. ज्यादा बदमाश था उससे ज्यादा बदमाश उससे बैरक ओबामा उससे ज्यादा बदमाश होगा. ये मुमकिन ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस में ज्यादा बेहतर आदमी है पिछले से ज्यादा खबीस आएगा. क्यों? क्योंकि लोग खबीस हो जाते हैं. लोग खुद खबीस हो जाते हैं. लोग माशरा मिन हैसुल कौम खबीस हो जाते हैं. तो वो शरीफ आदमी को टॉलरेट ही नहीं करते.
सेब के पेड़ से गाजर पैदा करने की तरह
फरूदी ने कहा ना कि भाई अगर ये जमहूरी हमारी चलता रहा तो इंशाल्लाह जो है
अच्छे लोग
आएंगे तो आसिफ जरदारी आ गए.
अब आप मान लें अब आप नहीं ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को नहीं मान लो. ये पाकिस्तान का नहीं ये मोहन जो सिंह है ये इंदिरा गांधी से बेहतर आदमी है. इसका दिमाग ही नहीं काम करता. बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता उसका. पता नहीं उसको कहां से कैसे भेजा. ये 100 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है भाई.
रिजर्व बैंक जो
लोगों का नुमाइंदा जो है नेहरू से बेहतर आदमी है किसी तौर पर. ये किसी तौर पर इंटेलेक्चुअली मॉरली किसी तौर पर सुपीरियर है उससे. तो भाई आप या वाजपेयी से बेहतर है कहीं
तो फर्क क्या मतलब सुपीरियर की बात है ना. मतलब
इररेलेवेंट है ना. यही तो बात है.
डेमोक्रेसी में फसल ही नहीं है.
इररेलेवेंट
असल तो सिस्टम सुपीरियर है वो एग्जिस्ट करता है.
सिस्टम में इंडिविजुअल इररेलेवेंट हो जाता है. इररेलेवेंट हो जाता है. रेलेवेंट तो इंडिविजुअल नहीं रहता. रेलेवेंट तो कोई जा रहा है. तो मोरालिटी तो बिल्कुल इररिलेवेंट चीज होती है सिस्टम के अंदर. तो
नो मैटर व्हाट यू विल लाइक इट विल एंड अप विद द सेम थिंग.
हालांकि आपकी जो तहजीब है वो बदलती है. जैसे हेड ऑफ द स्टेट अगर बेहतर होगा तो भेड़िया भेड़ के ऊपर हमला नहीं करता. इसका इम्पैक्ट जानवरों तक होता है. जानवरों तक पे उसका असर होता था कि कौन आदमी रूल कर रहा है तुम्हारे ऊपर. जो जिस आदमी चरवाहा था उसके भेड़ भेड़ को भेड़िया पकड़ के ले गई तो रोने लगा. तो उसके बाप ने कहा बदमाश जो मैंने भेड़ों की हिफाजत पे रहा था तू बैठा हुआ था और वो भेड़िया पकड़ के लिया. वो उसने कहा मैं इसलिए नहीं ले रहा, मैं तो रोज ही भेड़ को छोड़ देता हूँ. आज जो है भेड़िया पकड़ के ले गया इसका मतलब उमर बिन अब्दुल अजीज अब इंतकाल हो गया और मालूम किया तो पता चला खत्म इंतकाल हो गया. तो बताने का मतलब ये कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता था वो किसी इदारे की पैदावार नहीं होता था. इदारा उसकी पैदावार होता और उसकी लेजिटिमेसी जो आती थी वो आती थी उसकी कंपैटिबिलिटी से विल ऑफ द गॉड. अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये सब चीजें इररिलेवेंट है. रेलेवेंट ये होता है कि इंस्टीट्यूशन होते हैं और वो इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया में सक्सेसफुली प्रैक्टिस किए गए टू इम्पावर पीपल वो ठीक है. तो इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन एक वैल्यू न्यूट्रल चीज है, एक हिस्टोरिकल चीज है और फॉर्मल है. उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं. टेक्निकल चीज है वो आपने इस्तेमाल कर लिया उसके नतीजे में अच्छे नतीजे भी निकल सकते हैं बुरे नतीजे भी. भाई जिस तारीख से वो हमाहंग होगा उसमें वो ज्यादा पनपेगा फलेगा फूलेगा और जिस तारीख में वो कंसिस्टेंट नहीं है उसमें फलेगा फूलेगा नहीं पनपेगा.
सर अगर ये बात है तो ये जो एंटायर वॉर एक्टिविस्ट है अभी जो जूते मार रहे हैं उसको पुतला उतला बनाया हुआ है वॉशिंगटन डीसी में.
बुनियादी तौर पर जब हम 1 point एजेंडा मूवमेंट चलाते हैं मॉडर्न सिस्टम
से तवक्को कर रहे हैं
बुनियादी तौर पर वो सिस्टम को रीइन्फोर्स करने के लिए. 1 point एजेंडा मूवमेंट आर दी नंबर 1 ऑफशूट ऑफ द गिवन सिस्टम एंड इट ट्राई टू जस्टिफाई द सिस्टम. वो बुनियादी तौर पर सिस्टम डिपेंडेंट होती है और वो ये कहती है कि इस प्रॉब्लम को स्टिग्मेटाइज कर अलग निकाल लो. तो इसको अगर माइनस कर दो तो सिस्टम लेजिटिमेट होगा. भाई बुश के निकलने से कुछ भी नहीं होगा. लोग सिर्फ इतने बेवकूफ हो गए ना बैरक ओबामा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा.
उसने पूछने जो साथी उसने कहा कि देखे जूता फेंकने से मालूम कि इराकी इमाम आजाद है. उसने तो ये आर्गूमेंट लिया उसने.
वो कुछ भी नहीं हुआ
बेशर्मी.
अमेरिकन तो बड़े ओपन लोग उनको
आपने
वो उसने एंजॉय हंसना था.
वही मैं उसी का कह रहा हूँ
दूसरा
बेशर्मी की
जो राहत अम्मा कहते हैं नथर शाह जो एक इलाका था उसमें जब जंग हुई तो अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ा बादशाह पकड़ा गया. तो उन्होंने कहा भाई इसको हम है ना कत्ल भी नहीं करना चाहते क्योंकि इसका बाप जो था हमारे साथ मिला हुआ था उसके साथ हमारा मुआहदा था इसको कतल नहीं करेंगे. लेकिन ये कि बागी भी अब इसका क्या करें. तो वो जो वजीर था उसने कहा कि ये है ना बड़ा खुददार आदमी है तो आप इसकी इंसल्ट करेंगे तो मत जाएंगे खुद ही. वो उसको इंसल्ट ये किया कि उसको औरतों के साथ बंद कर दिया बादशाह शहजादा जो था थर्ड तो उसको इंतकाल हो गया. उसको बेइज्जती से तौहीन से मेरी तौहीन की. तो ये तो रिस्पेक्ट का अपने सोचने का है कि भाई मेरी तौहीन हो गई कि मुझे मांझियों के साथ इन्होंने बताया.
और जूते का नंबर बता रहे हैं
I thought it was number 10 and probably there are some people who always talk about who always wish to have attention of the people. Maybe he's of the same kind. So matlab ye aur uske baad ye kal parson wo engineering ki ambassador jisko wo international american school ke student ne khade hokar kaha tha ki bibi aap apna award apne paas rakhe mujhe nahi chahiye aapka award. यहाँ पोर्ट कासिम में जंगल में मंगल किया हुआ था और शौकत तरीन और फलाना सब प्रॉक्टर एंड गैम्बल की कोई सेरेमनी थी. सेकंड बिगेस्ट प्लांट लगा रहे थे यहाँ. तो वहाँ वो एक रिपोर्टर को आगे हुआ तो मरीन यूएस मरीन के जो लोग हैं वही वो एक दूसरे से कनेक्टेड हमारे भी जो एसएससी के लोग दिए गए तो उसके सीने पे हाथ रख के उसे एक्सक्यूज मी प्लीज पीछे किया. उसने गुस्से में आकर प्रॉब्ली यू यांकीज हैव द सेम फियर ऑफ शू अगेन मैडम. उस पर उसने वो जियो वाले को इंटरव्यू देते हुए कहा नो नो इट्स नॉट अबाउट द शू एक्चुअली. यानी वो इतना वो है उनको कि जो है क्या कहते हैं वो बेशर्मी से उसको वो इंटरव्यू काट कर वो कैमरे के सामने बात करेगी. एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट गाय जिसको मतलब एक तरह से ह्यूमिलिएट किया पीछे किया उस पर लेके गए. तो ये है 7,500 की 7,500 जो है वो तकरीबन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा. 100 मिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है.
नहीं मसला ये है कि हम लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है हर प्रॉब्लम का ही नहीं इंसान की नौकरी हो जाए तो सारे मसले हो जाए. ये इसका मतलब ये है हल कि भाई एक आदमी की नौकरी हो तो अब उसकी शादी भी हो जाएगी. अब उसको इलाज भी वो करवा सकेगा. अब उसके वो ईद भी मना सकेगा बकरीद भी मना सकेगा जिंदगी सारी हुई. तो इसका मतलब है इंसान का अल्टीमेट प्रॉब्लम ये है कि वो एम्प्लॉयमेंट ये है. और एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मिलती है. नॉन कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयमेंट की कोई शक्ल मौजूद नहीं दुनिया में या कम से कम फी जमाना मुमकिन नहीं. ये है ना इसका मतलब. तो ठीक बात नहीं है ना. इसको तो किसी भी प्लेन पर किसी भी एंथ्रोपोलॉजिकल प्लेन पर एक्सप्लेन किया जाए.
जाइगेंटिक चेंज आया कैसे हमारी सोसाइटी में सिर्फ इदारों को कबूल करने की वजह से. सिर्फ इदारों की तरफ बढ़े हम इस वजह से. इन्होंने हमें इतना बांध दिया कि जी 100 मिलियन डॉलर की फॉर एग्जाम्पल FDI आ रहा है फलाना ये आ रहा है इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा इतना ये करेगा इतना वो करेगा.
देखिए बहुत सारे लोग
बेड हो गई बिल्कुल.
बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि आप बुनियादी तौर पर स्टेट इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले कुछ लोग पैदा कर लेंगे. वो उनके स्टेक्स इस मुल्क में है ही नहीं. आप पाकिस्तान में इस पर जो रूलिंग एलिट है चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिशियन उनके स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर कहाँ है. क्यों पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कोई परेशान हो. कोई प्रॉब्लम नहीं है चले जाएंगे फौरन. बल्कि प्रॉबेबली जा चुके हो उनके से वही एक हो जो खेल रहा खिलाड़ी यहाँ पर हो बाकी सब बाहर बैठे हैं.
लेट अलोन द मिलिट्री पीपल.
इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो लोग हैं जो लोग 50 साल से रूल कर रहे हैं उन्होंने उनके स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं. उनके पाकिस्तान से बाहर हैं स्टेक्स. तो जब भी रूलिंग इलीट के स्टेक्स मुल्क से बाहर होंगे आप हमेशा इस तरह मार पड़ेगा.
नहीं वो तो चले
मैं तो सच कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के ज्यादा स्टेक्स थे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में जब वो रूल कर रहे थे बनिस्बत के उस रूलिंग एलीट के जिसमें अंग्रेजों के बाद यहाँ पर रूल किया.
वो तो चले लिबरल एलीट है. व्हाट अबाउट द रिलीजियस एलीट. व्हाट्स रॉन्ग विद देम. दे आर नॉट रेडी टू गो एंटायर कंजम्पशन. व्हाई नॉट.
मसला ये कि उनकी जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स है. वो कहते हैं कि खैर और शर के मेयारात का तायुन जो है वो थ्रू बैलेट होगा. तो जब आप
पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी कहती है लेकिन वो तो मार्क्सिस्ट उनके साथ नहीं है. मतलब वो जो अदर देन पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी है वो तो
नहीं मानते इसको.
लेकिन वो मतलब एक पोटेंशियल है उनके पास लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो नहीं.
बिल्कुल सही बात है. और उसके लिए जो उनके पास वो जो कुर्बानी देने के लिए जितने लोगों को जिद्दोजहद करनी चाहिए वो देने के लिए तैयार नहीं है. देखिए हमेशा बड़ा आदमी कुर्बानी देता है. हमेशा जिस तहजीब में बड़े आदमी ने मार खाई है आगे आके मारा वारा नहीं है उसने मार खाई है उसमें उसको
मार पड़ेगी. क्या फ्यूल जो होता है वो उसकी कुर्बानी होती है.
उसकी कुर्बानी होती है और मामूली कुर्बानी नहीं देता. वो छोटी मोटी कुर्बानी नहीं देता. बहुत बड़ी कुर्बानी फिर वो देता है. और जब वो देता है बड़ी कुर्बानी तो लोग उसको कभी भी जो है ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करते. बेनजीर अगर मर गई जिस वजह से भी मरी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया ना. आप देखें कि वोट का टर्नआउट रेट कितना बढ़ गया पाकिस्तान के अंदर. बिल्कुल पॉलिटिकली डिसइल्यूजन लोग थे. लोगों ने जाके वोट डाले भाई. लोगों ने रिगिंग हुई होगी लेकिन वोट भी डाले हैं लोगों ने. हालांकि उस भूल गए सब जो उसने करप्शन वगैरह जो की होगी सब भूल गए. और अभी आप अगर याद दिलाए लोगों को तो लोग नाराज हो जाते हैं. फौरन इस्लाम वगैरह की बातें करते हैं ये वो. तो वो जो है उसकी जो पॉलिटिकल फेलियर्स हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. ऐसे कल्चर के अंदर कोई नेक जेन्युइन आदमी आकर जिंदगी गुजारे तो लोग उसको छोड़ देंगे, ऐसी बाहर में जाए ऐसा नहीं हो सकता। और अगर लोग उसको छोड़ भी दें तो अल्लाह तो नहीं छोड़ेगा ना, असल में तो इंसान को
सही के जो नेशनल टेलीविजन ने जब ये अनाउंस किया कि दो जो है वो हिजबुल्ला एक्टिविस्ट पकड़े गए और उनको मार दिया गया, तो देवर अनअवेयर ऑफ इट के इसके अंदर हसन नसरुल्ला का अपना बेटा भी है। और जब वो उनके लाशें वगैरह जब इनको वापस किए तो हसन नसरुल्ला ने जब सारे यानी कि जब दिए जा रहे थे तो बाद में पता चला तो इसराइली अथॉरिटी ने कहा कि शायद बीच में कुछ इस तरह की बात हुई थी कि हम जो है फौजी एजाज के साथ आपको जो है ये देंगे क्योंकि ये इसके अंदर वो उनकी हाई एलीट की ये है वो है, तो हम इसको आपके बेटे को फौजी एजाज के साथ ताकि वो सियासी अहदाफ जो है हासिल किए जा सके। हसन नसरुल्लाह का ये स्टेटमेंट था कि नहीं मेरे बेटे को भी उसी तरह से वापस किया जाए जिस तरह से उनको दूसरे एक्टिविस्ट को वापस किया जा रहा है। तो उसके बाद यानी कि लोग इसराइली के एक स्टेटमेंट आया था कि अगर हमें पता होता उस लेवल के ऊपर कि इनका बेटा भी इन्वॉल्व हो सकता है, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इनका बेटा भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो शायद हम इस इवेंट को कैश करवा सकते, बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा भी हो सकता है। एक बात
लोगों ने देखे, मसला ये है कि लोगों ने कुर्बानी का मतलब ये समझ गया कि इंसान जाए और जाके मर जाए, देखिए जिंदा रहना ज्यादा मुश्किल होता है मरने से, इस्लाम के लिए जिंदा रहना इस्लाम के लिए मरने से ज्यादा आसान होता है, ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ बड़ी मार पड़ती है आदमी को, लेकिन जब इंसान एक टाइम गुजारता है ना तो उसका इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। तो अगर फर्ज कर लेते हैं कि हम कोई ऐसी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना चाहिए उसूल है, और सारी तंजीमों को अपनी अपनी जो बाहरी कमजोरी है उनको ओवरकम करना चाहिए, उनको रिकनसाइल करना चाहिए कि एक वक्त आए कि लोग ये भूल जाएं कि ये क्या किसकी तरफ हम जा रहे हैं, किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। ये जो पार्टी मेकिंग है ये बुनियादी तौर पर एक मॉडर्न फिनोमेना, बुनियादी तौर पर मुसलमानों ने तो ऐसा कभी नहीं रहा कि भाई पार्टी बना दी गई हो, सब लोग पार्टी में मेरी आ जाओ मेरी पार्टी के अंदर। एक बार इन्होंने ये किया था ये इख्वानो सफा में, लेकिन वो भी अंडरग्राउंड मूवमेंट थी, सक्सेसफुल नहीं थी, अनसक्सेसफुल थी, ऊपर आते थे ऊपर आकर वो काम करते थे, मतलब बहुत सारे मारे भी गए बहुत सारे सक्सेसफुल थे। तो पता है मतलब ये पार्टीबाजी करने के नतीजे में तो दूसरी पार्टी आपका पोलिटिकल राइवल होती है, तो हमेशा आप उसके ऊपर अपने पॉइंट गेन करते रहते हैं, पॉइंट गेनिंग एक्टिविटी होती है, उसके नतीजे में कभी भी आप कोई सब्सटेंटिव इस्लामी जिद्दोजहद नहीं करते।